नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। चतुर्थ स्कंद प्रारंभ करते हैं। तीसरे स्कंद में विदुर जी स्वयंभू मनु के विषय में प्रश्न करते हैं। स्वयंभू मनु के पुत्र और पुत्रियों के वंश परंपरा के विषय में इनकी जिज्ञासा है, विस्तार से जानना चाहते हैं, जिसमें उनके एक पुत्री के विषय में वर्णन किए, देहूति के विषय में जो स्पेशल जिज्ञासा किया गया विदुर जी के द्वारा। फिर यहाँ चौथे स्कंद के प्रारंभ में स्वयंभू मनु की चर्चा करते हुए उनके अन्य संतानों की वर्णन करते। तो मैत्रेय मुनि कहते हैं, मनोस्तु सतरूपायाम त्रिशह कन्याश्च जगिरे आकुति देहूतिश्च प्रसूति इति विश्रुता। स्वयंभू मनु महाराज सतरूपा के गर्भ से प्रिय व्रत रुतानपाद दो पुत्रों के अतिरिक्त तीन पुत्रियां प्राप्त किए, जिनका नाम था आकुति, देहूति और प्रसूति। देहूति की कथा तो आप सुन चुके हैं, जो करदम जी के साथ ब्याही गई और इनकी नौ पुत्रियां हुई सुप्रसिद्ध, और भगवान कपिल देव पुत्र के रूप में आए। अब आकुति प्रथम पुत्री हैं। यद्यपि मनु महाराज को पुत्र थे प्रियव्रत रुतानपाद, लेकिन जब आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से करने लगे तो उस समय शत्रुपा जी की इच्छा थी कि इस आकुति के गर्भ से जन्मा हुआ प्रथम संतान मुझे चाहिए, तो इस शर्त के साथ विवाह किया गया, जिसको पुत्रिका धर्म कहते हैं। पुत्रिका धर्म के अनुसार विवाह किया गया। आकुतिम रुचये प्रादाद अपि भ्रातृ मतिम नृप पुत्रिका धर्म माश्रित शत्रुपानुमोदित। कभी कभी किसी को पुत्र नहीं होते हैं, केवल पुत्रियां होती हैं, तो अपने पुत्रियों के विवाह करते समय ऐसा शर्त रखा जाता है कि हम अपनी बेटी का विवाह आपके साथ कर रहे हैं, लेकिन इससे जो पहला पुत्र होगा वो मुझे दे दीजिएगा, इसको मैं गोद रख लूंगा और अपना संतान मानकर पालन करूंगा। इसको पुत्रिका धर्म कहते हैं। विवाह के पहले ही ऐसा शर्त होता है। यति मनु महाराज के पुत्र थे प्रियव्रत रुतानपाद, लेकिन शत्रुपा की इच्छा थी और मनु महाराज की भी इच्छा थी, इसलिए पुत्रिका धर्म आश्रित शत्रुपा अनुमोदिता, पुत्रिका धर्म के अनुसार विवाह किए, जो शत्रुपा के द्वारा अनुमोदित था। प्रजापति रुचि ने आकुति के गर्भ से एक पुरुष और स्त्री का जोड़ा उत्पन्न किया। पुरुष जो थे साक्षात यज्ञ पुरुष भगवान विष्णु थे, और स्त्री जो थी लक्ष्मी स्वरूपा दक्षिणा थी। भगवान लक्ष्मी नारायण ही उनके पुत्र और पुत्री बनकर आए। अब तो शर्त के अनुसार यज्ञ पुरुष को मनु महाराज ले लिए और बेटी दक्षिणा रह गई। दक्षिणा जब विवाह योग्य हुई तो अपने नित्य पति भगवान यज्ञ पुरुष को ही पति के रूप में स्वीकार। यद्यपि ऐसे देखने में तो दोनों भाई बहन हैं, लेकिन साक्षात लक्ष्मी नारायण हैं। तो भगवान यज्ञ पुरुष दक्षिणा से विवाह किए और दक्षिणा के गर्भ से 12 संतान प्राप्त किए, तोष, प्रतोष, संतोष, भद्र, शांति, इदस्पति, इद्म, कवि, विभु, स्वर्ण, सुदेव और ओचन। और यज्ञ पुरुष का स्वयंभू मनवंतर में बहुत बड़ी भूमिका है। स्वयंभू मनवंतर में मनवंतरावतार भगवान के रूप में यही है, प्लस इंद्र भी उस समय के यही थे। ये दो महान पद को संभाले यज्ञ पुरुष, इंद्र पद को और मनवंतरावतार। जो मनवंतर मिनिस्ट्री में, मनवंतर सरकार में 6 विभाग होता है, मनु महाराज, मनु के पुत्र, मनवंतरावतार, इंद्र, इंद्र के सहायक देवता और सप्तर्षिगण। तो इस 6 विभाग में 2 विभाग तो यज्ञ पुरुष संभाले, मनवंतरावतार और इंद्रपद। और संबंध में स्वयंभू मनु के पौत्र थे, बेटी के पुत्र थे, तो इनके पुत्र तुषित नामक देवता कहलाए। मनु के दूसरी कन्या देहूति का विवाह करदम के साथ हुआ, जो तीसरे स्कंद में वर्णन हो चुका है। मनु महाराज की अपनी तीसरी कन्या थी प्रसूति। मनु महाराज के बहुत ज्यादा संतान नहीं है, याद रखना चाहिए, प्रिय व्रत उतानपाद, आकुति, देहूति और प्रसूति। तो सुती का मनु महाराज ने विवाह किया ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष प्रजापति से, और उसकी विशाल परंपरा से सारा त्रिलोकी भरा हुआ है। सबकी बड़ी भूमिका है। दक्ष प्रजापति को दक्ष इसलिए नाम पड़ा कि सृष्टि करने में बड़ा दक्ष थे, काबिल थे। मरीचि मुनि विवाह किए थे कला के साथ, तो उनसे दो संतान प्राप्त किए, कश्यप और पूर्णिमा, जिनके वंश परंपरा से सारा जगत भरा हुआ है। कश्यप जी दक्ष प्रजापति के 17 लड़कियों से विवाह किए और उन्हीं की पत्नी है दीति, अदिति आदि, ये सब वर्णन आएगा आगे। पूर्णिमा के बीरज और विश्वग नामक पुत्र हुए और देवकुल्या नामक बेटी हुई जो बाद में गंगा के नाम से प्रसिद्ध हुई, गंगा देवकुल्या। इसके बाद अत्रि की पत्नी अनसुईया, जिनसे दत्तात्रेय, दुर्वासा और चंद्रमा पुत्र के रूप में हुए, और ये क्रमशः भगवान विष्णु, शंकर और ब्रह्मा हैं। तब विदुर जी प्रश्न करते हैं 16वें श्लोक में कि अत्रे गृह सुर श्रेष्ठा स्थित्युत्पत्यंत हेतव किंचित चिकित्सयो जाता एतदाख्या ही मैं गुरु। हे गुरुदेव, कृपा करके यह बताइए कि जगत की उत्पत्ति, स्थिति और अंत करने वाले सर्वश्रेष्ठ तीनों देवता किस उद्देश्य से अत्रि के घर में आए, अपने अंश से अवतार लिए, ऐसा क्यों, कैसे? तो मैत्रेय मुनि कहते हैं कि ब्रह्मा जी जब अत्रि जी को आदेश दिए सृष्टि रचना के लिए, तो ये अपने सद्धर्मिणी के साथ तपस्या करने गए। तो ये तप करने के लिए ऋक्ष नामक फूल पर्वत पर गए और वहाँ बड़ा ही सघन वन, अशोक, पलाश आदि का वृक्ष था, बहुत सुंदर नदी बहती थी, निर्विंध्या नामक नदी, और वहाँ पर अपने चित को प्राणायाम के द्वारा अपने मन बुद्धि को एकाग्र करके 100 वर्ष तक केवल हवा पीकर, सर्दी गर्मी के द्वंद्वों को सह कर, एक पैर से खड़ा होकर तपस्या की अत्रि मुनि। प्राणायाम संयम्य मनोवर्ष शतम मुनि, 19 श्लोक में, अतिष्ठ देख पादे न निर्द्वंदो नील भोजन, अनिल भोजन, हवा पी करके तपस्या करते रहे, और उस समय प्रार्थना करते थे, संकल्प मन में किए थे कि जो जगत की सृष्टि करते हैं, पालन करते हैं और संहार करते हैं, ओ प्रभु हमें दर्शन दें। इनकी तपस्या, इनकी साधना देकर भगवान प्रकट हुए, तीनों गुण अवतार भगवान विष्णु, ब्रह्मा और शिव जी एक साथ प्रकट हो गए। तो जब भगवान को देखे अत्रि मुनि तो सष्टांग प्रणाम पृथ्वी पर लोट करके दंडवत किए। प्रणम्य दंडवत भूमा भूम उपतस्थे अर्हणांजलि वृष हंसा सुपर्णास्थान स्वे स्वे चिन्हैश्च चिन्हितान। तीनों अपने अलग अलग सवारी पर बैठे थे, भगवान ब्रह्मा हंस पर, भगवान विष्णु गरुड़ पर और भगवान शिव बैल पर। वहाँ उन लोगों को देख करके अत्रि मुनि कहते हैं कि मैं जिसे पुकार रहा था वह कौन है, क्योंकि मैं तो केवल एक ईश्वर को बुलाया संतान प्राप्ति की शक्ति प्राप्त करने के लिए, फिर तीन कहाँ से आ गए, कैसे आ गए? और तीन आ गए तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन मैं जिसको पुकार रहा था वो कौन है, तो कृपा करके बताइए। तो भगवान हंसने लगे अत्रि मुनि के वचन सुनकर, और भगवान बताए कि आपने जो संकल्प पूर्वक जो मंत्र पढ़ रहे थे, हमारे तीन रूप है, हम एक रूप से नहीं सृष्टि पालन संहार करते हैं, इसके लिए हम तीनों गुणों को स्वीकार करके अलग अलग ढंग से सृष्टि करते हैं, पालन करते हैं, संहार करते हैं, तो आप हम तीनों को पुकारा था इसलिए हम तीनों आ गए। तो अत्रि मुनि और अनसुईया जी कहे, चलो आप आ गए तीन रूप में, आप लोग बहुत सुंदर लग रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि आप तीनों हमारे गर्भ से जन्म लें। तो अत्रि जी के और अनसुईया के प्रार्थना से भगवान उनके पुत्र के रूप में हुए, भगवान विष्णु के अंश से दत्तात्रेय, ब्रह्मा के अंश से चंद्रमा और शिव के अंश से दुर्वासा। अंगिरा जी श्रद्धा नामक पुत्री से विवाह किए थे करदम जी के, तो श्रद्धा के गर्भ से इन्होंने सीनी वाली, कुहू, राका और अनुमति नामक पुत्रियां, सीनी वाली, कुहू, राका और अनुमति ये पुत्री के रूप में, और उत्तप्त जी और ब्रह्मनिष्ठ बृहस्पति जी पुत्र के रूप में आए, और हविर्भु के गर्भ से पुलस्त जी ने दो पुत्र प्राप्त किया, अगस्त और विशस्तवा। अगस्त सुप्रसिद्ध अगस्त जो समुद्र को पी गए थे। विश्रवा मुनि इडबिडा से कुबेर और केशिनी से रावण, कुंभकर्ण, विभीषण का जन्म दिया। महर्षि पुलह गति से कर्म श्रेष्ठ बरियान और सहिष्णु ये तीन पुत्र उत्पन्न किए, और क्रतु जी क्रिया से 60,000 बाल खिल्यादि ऋषियों का जन्म दिया। 60,000 बाल खिल्यादि ऋषि, बाल खिल्यादि इतना छोटे छोटे होते हैं, छोटे 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 एकदम 60,000 की एक छोटे से गड्ढा में सब लोग एक बार डूब रहे थे, क्रतु जी ने इनको जन्म दिया। अरुंधति वशिष्ठ जी की पत्नी थी, तो वशिष्ठ जी ने इनसे चित्रकेतु, सुरुचि, बिरजा, मित्र, उलबल, वसुभृद्यान और दिमान, सात विशुद्ध ब्रह्मर्षियों का जन्म दिया। ये सब सप्तर्षि गण हैं। और शांति से अथर्वा मुनि ने दधीची नामक तपोनिष्ठ पुत्र को प्राप्त किया। दधीची इनका दूसरा नाम अश्वशिरा भी था, जिस समय अश्विनी कुमार कोई विद्या पढ़ाए घोड़े के सिर से, तो इसलिए इनका एक नाम था अश्वशिरा। और ख्याति, नवी पुत्री ख्याति थी जो भृगु जी के साथ विवाह हुआ। भृगु जी ने इनसे धाता विधाता नामक दो पुत्र प्राप्त किए और श्री नामक एक पुत्री प्राप्त हुई। मेरु ऋषि की पुत्री आयाति धाता के साथ और नियति विधाता के साथ ब्याही गई। धाता आयति से मृकंड ऋषि को प्राप्त किए, यही मृकंड के पुत्र हुए मार्कंडे जी, मृकंड ऋषि के पुत्र सुप्रसिद्ध, और प्राण के वेद शिरा। और भृगु जी के एक कवि नामक पुत्र भी थे, तो कवि के पुत्र हुए उष्णा, शुक्राचार्य बड़े प्रसिद्ध ऋषि, असुरों के गुरु। इस तरह प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ। इन्होंने 16 कन्याएं उत्पन्न किए, तो 16 में 13 धर्म के साथ, एक अग्नि के साथ, एक पितृगण के साथ और एक भगवान शंकर के साथ विवाह हुआ। धर्म के संतान श्रद्धा से शुभ, मैत्री से प्रसाद, दया से अभय, शांति से सुख, तुष्टि से मोद, पुष्टि से अहंकार, क्रिया से जोग, उन्नति से दर्प, बुद्धि से अर्थ, मेधा से स्मृति, तितिक्षा से क्षेम, हरी लज्जा से प्रसय विनय, और समस्त गुणों के खान मूर्ति से भगवान नर नारायण ऋषि का जन्म हुआ। धर्म के मूर्ति नामक पत्नी से भगवान नर नारायण आए। देवताओं ने नर नारायण की स्तुति किए और अग्नि देव स्वाहा से पावक, पवमान और सूची नामक तीन पुत्र उत्पन्न किए। पितरों ने स्वधा से धारिणी और बैना नामक दो कन्याएं प्राप्त किए। तो भगवान शंकर अपनी पत्नी सती से कोई संतान नहीं प्राप्त किए, क्योंकि सती जीवावस्था में ही बिना संतान प्राप्त किए ही अपने पिता के शिव विरोधी आचरण से असंतुष्ट होकर क्रोध वश जोग के द्वारा स्वयं ही अपने शरीर का त्याग कर दिया था। अपने शरीर से जोगाग्नि उत्पन्न करके जल गई, कोई संतान ही नहीं हुआ। तो इस प्रकार पहला अध्याय पूरा करते हैं और दूसरा अध्याय में विदुर जी प्रश्न करते हैं। भवे शीलवताम श्रेष्ठ दक्षो दुहित्री वत्सल विद्वेषम अकरोत कस्मात अनादित्यात्मजाम सतीम। हे ब्रह्मन, दक्ष प्रजापति तो अपने लड़कियों से बहुत प्रेम करते थे, फिर उन्होंने अपनी कन्या सती का अनादर कैसे कर दिया। अगर तो शीलवानों में सबसे श्रेष्ठ महादेव माने जाते हैं और ऐसे श्रेष्ठ शीलवान दमाद से कैसे झगड़ा हो गया। विद्वेषम अकरोत कस्मात अनादित्यात्मजाम सतीम, कैसे सती का अनादर किए और शीलवानों में सबसे श्रेष्ठ महादेव से द्वेष क्यों किया। दक्ष, कस्तम चराचर गुरुम निर्वैरम शांति विग्रहम आत्मा रामम कथम दृष्टि जगतो दैवतम महत। अरे महादेव जी तो चराचर के गुरु हैं, वैर रहित हैं, शांति मूर्ति हैं, आत्मा राम है, जगत के परम आराध्यतम देव हैं, उनसे भला किसी का बैर। शिव जी से कैसे बैर होगा भाई, वो तो झगड़ा करने वाले हैं नहीं, सबको आशीर्वाद देते हैं, शांति देते हैं, जो जैसा चाहता है वैसा वरदान देते हैं, बड़ी जल्दी खुश हो जाते हैं। एतद् दाख्या ही में ब्रह्मन् जमातु ससुरस्य च विद्वेषस्तु यतः प्राणं तत्त्यजे दुस्त्यजान सती। हे प्रभु, ससुर दमाद के झगड़ा को बताइए, थोड़ा स्पष्ट कीजिए कैसे हो गया। जमातु ससुर, जमात और ससुर के झगड़ा को बताइए। और झगड़ा भी साधारण नहीं हुआ, जिसमें बेटी अपनी दुस्त्यज प्राण की बलि दे दी सती, यह सुनने की बहुत इच्छा है, कृपा करके कहिए। फिर कथा कहते हैं कि एक बार ब्रह्मा जी दक्ष प्रजापति को प्रजापतियों का अध्यक्ष बना दिए थे। दक्ष एक बार यज्ञ करा रहे थे, बहुत बड़ा बड़ा यज्ञ, उसमें बड़े ऋषि मुनि देवता अग्नि सभी लोग जुटे हुए थे। और यज्ञ के तो जब वो यज्ञशाला में प्रवेश किए तो सारे देवता ऋषि मुनि प्रजापति सभी लोग खड़ा होकर उनका अभिवादन किया। अध्यक्ष जी आ गए तो करना ही चाहिए अभिवादन, सब लोग प्रणाम किए, लेकिन दो व्यक्ति नहीं अपने आसन से हिले, अन्न प्रणाम भी किए, बैठे बैठे भी प्रणाम नहीं किए, खड़ा भी नहीं हुए। वो थे भगवान ब्रह्मा और शिव। चलो ब्रह्मा जी तो पिताजी हैं, वो नहीं किए तो ठीक है, स्वाभाविक है। दक्ष ब्रह्मा जी के निकट आकर उनका पैर छूकर प्रणाम किए, प्रणाम करके और उनकी आज्ञा लेकर आसन पर बैठ गए। शिव जी प्रणाम नहीं किए थे। अब दक्ष प्रजापति को शिव जी का व्यवहार सहन नहीं हुआ। अरे कितना हूँ बढ़ जाए बेटा या दामाद तो क्या प्रणाम भी नहीं करेगा? कम से कम उठकर खड़ा नहीं हुआ, अभिवादन नहीं किया तो कुर्सी पर बैठे बैठे तो हाथ जोड़ देना चाहिए। हाथ भी नहीं जोड़ा तो मुंह से भी बोल देना चाहिए, कुछ नहीं कहा। अब दक्ष प्रजापति का तो अहंकार ऐसे ही बढ़ा था, वो तो अपने को अध्यक्ष मान रहा था और प्लस ससुर तो था ही, संबंध में बड़ा था ही। अब एकदम उस भरी सभा में और कहता, श्रूयताम ब्रह्मर्षयो में सहदेवा सहाग्नय, यहाँ उपस्थित सभी ऋषि लोग मेरी बात सुनिए, सभी देवता लोग सुनिए। मैं ना समझी या द्वेष बस कुछ नहीं कह रहा हूँ, ऐसी नहीं कि मैं कोई क्रोध में या ना समझी में कह रहा हूँ, बल्कि शिष्टाचार की बात कहता हूँ। साधो नाम ब्रुवतो ब्रीतम ना ज्ञाना न च मत्सरान, मैं मत्सरता से या ना समझी से बेवकूफी से कुछ नहीं बोल रहा हूँ, मैं उचित बात कहने जा रहा हूँ। अयम तु लोकपाला नाम जसोग्नो निरपत्र पर सदभीराचरित पंथा जैन स्तब्धे न दूषित। अरे यह निर्लज महादेव, इसको थोड़ा भी लज्जा नहीं आ रही है। यह देखिए सारे लोकपालों की मर्यादा को, शिष्टाचार को धूल में मिला दिया। इस घमंडी ने सत्पुरुषों का जो आचरण है, सदाचार है, उसको मटिया मेट कर दिया, लांछित कर दिया। देख कैसा रहा है बंदर की तरह। इस मरकट लोचन को मैं अपने कमल नयनी पुत्री का विवाह किया हूँ, सारा संसार जानता है। तो अगर मान लीजिए कोई पूछ दे कि आप इस बंदर आँखा से क्यों विवाह कर दिए कमल नैनी का, पहले भी इनका आँख बंदर के समान था कि आज हो गया, तो कह रहे हैं कि मैं पिताजी के कहने पर किया, इनके कहने पर, मेरा मन नहीं था, लेकिन पिताजी के कहने पर मैं अपने कमल नैनी पवित्र कन्या का विवाह इस बंदर आँखा से कर दिया। ये समय शिष्यता प्राप्त हो, ये मेरी शिष्यता प्राप्त किया है, मेरा पुत्र है, यन्मे दुहितु ग्रहित, इसने मेरी बेटी का पाणी ग्रहण किया है। पाणी विपाग्नि मुखत, मैं ब्राह्मणों के सामने, अग्नि के सामने अपने बेटी का विवाह किया हूँ। सावित्रा इव साधुवत, कितनी पवित्र बेटी का विवाह किया हूँ, और यह देखिए मेरे साथ कैसा व्यवहार किया है। गृहत्वा मृग सावक्षा पाणी मरकट लोचना, अरे मैं अपने कमल नैनी बेटी का विवाह इस बंदर आँखा से कर दिया, लेकिन प्रत्युत्थान नाभिवादार है वाचा प्यकृत नोचितम। अरे यह मूर्ख खड़ा होकर पैर छूकर प्रणाम करना तो बहुत दूर की है, इसको तो चाहिए कि सभा में जब मैं आया तो अपना कुर्सी छोड़े और मेरा चरण छुए, प्रणाम करे, लेकिन इतना नहीं किया, मुख से भी नहीं, दूर से भी नहीं किया बाबा प्रणाम। कुछ कहना चाहिए ना, पिताजी प्रणाम, कुछ नहीं कहा, बाणी से भी मेरा सत्कार नहीं किया, वाच्याप्या कृतनोचितम। देखिए भरी सभा में हमारा अपमान किया। अगर दक्ष नहीं बोलता तो हो सकता था दूसरे लोग ध्यान भी नहीं दिए होते, क्या हुआ, अपनी बेइज्जती अपने मुख से कर रहा है। भरी सभा में कौन केयर करता है, सब लोग खड़े हो गए, मान लीजिए शिव जी नहीं भी खड़ा हुए तो कौन ध्यान देता है कि प्रणाम किए कि नहीं किए। अब अपने मुख से बोल रहा है कि इसने ऐसा कर दिया, इसने ऐसा किया, मेरा अपमान कर दिया, अब एकदम बोलना चालू कर दिया। हाय हाय मैं क्या कहूँ, अनाधिकारी शूद्र जिसको वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है, अगर वह वेद पढ़ ले वैसे ही इस अनाधिकारी को मैं अपनी कन्या दे दिया। इसको मेरी कन्या लेने का अधिकार नहीं था, लेकिन क्या कहा जाए, प्रेतों के स्थान में रहता है मरघट में। दक्ष प्रजापति अपने दामाद की बेइज्जती भरी सभा में कर रहा है, यह प्रेतों के निवास स्थान में रहता है, भूत प्रेत के साथ चलता है, इसके साथ कोई भी अच्छा लोग चलते हैं, भूत प्रेत के साथ घूमता है, पूरा पागल है, एकदम नंग धड़ंग, कभी अपने बाल में कंघी नहीं लगाता है, इसी तरह घूमता रहता है, मूर्ख, कभी हंसता है कभी रोता है, एकदम पागल की चर, चिता भस्म कृत स्नान, कभी तो ये नदी में बढ़िया से स्नान नहीं करता, बस चिता का राख लपेट लेता है, नरमुंड पहनता है, गले में भस्म लपेट कर चलता है, हड्डियों का माला पहना है, नाम मात्र का शिव है, वास्तव में अशिव है, कल्याणकारी नहीं है, मंगल रूप है। तस्मान उन्माद नाथाय नष्ट शौचाय दुर्हृदय दत्ता बतमया साध्वी चोदित परमेष्ठिना। तो मान लीजिए कोई पूछे कि आप इतना दोष निकाल रहे हैं, विवाह करने से पहले न सब देखना चाहिए। ब्रज में कहते हैं करके सगाई जाति पूछे जमाई थे, विवाह करने के बाद तब अपने दामाद से बबुआ कौन जात के हो? विवाह करने के बाद पूछेंगे बबुआ आपका जन्म किस जाति में हुआ, ये क्या उचित है? जानबूझकर बेटी का विवाह करना चाहिए ना। क्या कहूँ, मेरा मन नहीं था, मैं केवल पिताजी के ब्रह्मा जी के बहकावे में आकर इस पिचास से विवाह कर दिया। नष्ट शौचालय दुर्हृदय जिसका कोई आचरण नहीं, आचारहीन है और दुष्ट स्वभाव वाला है, ऐसे व्यक्ति से मैं अपनी भोली भाली बेटी का विवाह कर दिया। दत्ता बतमया साध्वी, मेरी बेटी साध्वी है, सुंदर भी है और साध्वी भी है। आचोदिते परमेष्ठिना, मैं परमेष्ठी ब्रह्मा के कहने पर इसके बहकावा में आ गया। तो दक्ष इस प्रकार शिव जी को बुरा भला कह रहा था। शिव जी तो चुप, कुछ प्रतिकार नहीं कर रहे थे, एकदम शांत निश्चल भाव से बैठे थे। और जब कुछ नहीं बोले तो और इसका पारा गर्म हो गया। कम से कम इतना बोल रहा है तो शिव जी को कुछ बोलना चाहिए ना, तो नहीं बोलना उसको चिढ़ाने जैसा लग रहा था। शिव जी बल्कि मंद मंद मुस्कुरा रहे थे, कहते देखिए मैं इसको इतना बोल रहा हूँ और इसको आनंद आ रहा है। कोई भी आदमी जिसको होश होगा तो प्रतिकार करेगा ना, कि आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं, लेकिन चुप है तो इसका मतलब एकदम बुद्धिहीन है, पागल है। कुछ जो जिसके पास समझ हो तो वो विरोध करेगा। और क्रोध चढ़ गया इसका एकदम पारा, एकदम क्रोध में हो गया। जब शिव जी जितने चुप थे उतने क्रोधित होता था, दक्ष के क्रोध का पारा इतना चढ़ गया कि हाथ में जल ले लिया और भरी सभा में शिव जी को श्राप देता है। यह नीच, ये महादेव देवताओं में बड़ा है, निश्चित रूप से अधम है। अब मैं इसको श्राप देता हूँ कि यहाँ इन रूपेंद्री जितने देवता हैं उनके साथ देव समाज में जग में इसको भाग नहीं देना चाहिए, नहीं मिलेगा। और अध्यक्ष था ही, और प्लस श्राप भी दे दिया, इसको जग में हिस्सा नहीं दिया जाएगा, न मिले। जितने सभासद थे जब पानी लिया श्राप देने के लिए, तो कुछ बड़े बड़े लीडर थे जो ब्रह्मर्षि ब्राह्मण, उन्होंने अरे आप क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, श्राप देंगे क्या, मना कर रहे थे। निषिद्ध मानस सदस्य मुखई दक्षो गिरीत्राय विशीर्ष शापम तस्वाद विनिष्क्रम में विविध मन्यु जगाम कौरव्य निजम निकेतनम। तो जितने बड़े बड़े लोग थे सब मना करने लगे, अरे ऐसा मत कीजिए मत कीजिए, लेकिन माना नहीं, श्राप दे दिया और क्रोध में तुरंत उस सभा से निकलकर घर चला गया। अब कोई जग की कार्रवाई नहीं, बंद। क्रोध में इतना पागल था किसी का कुछ सुना ही नहीं, घर चला गया। नंदीश्वर जी उस सभा में नहीं थे, कानाफूसी चारों तरफ चर्चा होने लगा कि दक्ष श्राप देकर शिव जी को चला गया। तमतमाए हुए आए और दक्ष और उन ब्राह्मणों को, जो दक्ष के ग्रुप के ब्राह्मण थे, उनको दुर्वचन करते हुए बड़ा भयंकर श्राप देना चालू किए। नंदीश्वर जी भी एकदम क्रोध में आ गए और कहने लगे, बोले जो इस मरण धर्मा शरीर में अभिमान करके किसी से द्वेष करता है, भगवान शिव जो सभी प्राणियों से प्रेम करते हैं उनसे जो द्वेष करता है, वो ऐसे भेद बुद्धि वाला मूर्ख, ऐसे दक्ष और इसके सपोर्टर तत्व ज्ञान से विमुख हो जाएं, इनको कोई भी तात्विक ज्ञान न हो, ये आत्म स्वरूप को भुला देने वाले साक्षात पशु है, ये अत्यंत स्त्री लंपट हो और इस दक्ष का मुंह बकरे के समान हो। ये ब्राह्मण लोग जो दक्ष के सपोर्ट करते हैं, ये ब्राह्मण लोग भक्षा भक्ष के विचार छोड़कर केवल पेट पालने में ही अपनी विद्या तपस्या और व्रत आदि का आश्रय लेंगे। ये धन शरीर और इंद्रियों को सुख ही सुख कर मानेंगे, इन्हीं के गुलाम होकर दुनिया में भीख मांगते रहेंगे। कितना भारी दिक्कत ब्राह्मणों के ऊपर आ गया। इस तरह इनके श्राप को जब भृगु जी सुने, अरे अरे अरे, अरे ब्राह्मणों को श्राप देने लगा। भृगु जी भी अब क्रोधित हो गए कि ब्राह्मणों को श्राप दे रहा है। कहते हैं जो शिव भक्त है, नष्ट शौचा मुदधियो जरा भस्म अस्थि धारिण विसंतु शिव दीक्षायाम जत्र दैवम सुरासवम। अरे मूर्ख शैव लोग, शिव के सपोर्टर, सुन लो, जो लोग इस तरह से शिव भक्त हैं, उनके अनुयायी हैं, वे सत शास्त्रों के विरुद्ध आचरण करने वाले हों, वैदिक शास्त्र का ज्ञान नहीं हो, तुम लोग पाखंडी हो जाओ, तुमको विशुद्ध भागवत धर्म का ज्ञान नहीं हो, और जो लोग शौचार विहीन मंद बुद्धि जटाराख हड्डियों को धारण करते हैं, वे शैव संप्रदाय में दीक्षित हों, ऐसे मूर्ख लोग, और सुरा रासव देवताओं के समान उनको आदरणीय हो, पियो शराब और गांजा पीते रहो। श्राप देने लगे। अब बताइए बेचारे शिव जी के भक्तों पर भी आफत आ गया। तुम लोग धर्म की मर्यादा वर्णाश्रमियों के रक्षक ब्राह्मणों की निंदा कर रहे हो, इससे मालूम होता है कि तुम पाखंड का आश्रय ले लिए हो, तुम वेद का ज्ञान नहीं है। भगवान विष्णु ब्राह्मणों से प्रेम करते हैं और तुम ब्राह्मणों को श्राप दे रहे हो, तो जाओ तुम पाखंडी हो जाओ। अरे सारे वेदों के मूल साक्षात भगवान विष्णु है, तुम ब्राह्मणों को श्राप देकर सत्पुरुषों का अपमान किया है, वेद और ब्राह्मणों की निंदा किया है, इसलिए पाखंड मार्ग में जाओ। भगवान विष्णु का अनादर किया, भृगु जी विष्णु विष्णु करने लगे तो अब शिव जी सोचे कि अरे बाप रे, अब तो प्रसंग बढ़ रहा है, ये तो कहीं विष्णु सपोर्टर भृगु विष्णु विष्णु कर रहा है, सैयों को हमारे भक्तों को श्राप देने लगा। आखिर विष्णु के पक्ष में बोल रहा है ना, ब्राह्मणों को तो श्राप दे दिए, चलो चलेगा, भिखमंगी करेंगे या जो भी करेंगे, लेकिन वैष्णवों को श्राप देगा नंदीश्वर तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए शिव जी तुरंत कुर्सी छोड़े और सभा से निकल गए। तस्यैवं वदतः शापं भृगो स भगवान भव निष्क्राम ततः किंचित विमनायो सानुगः। अनुयायियों के साथ चल दिए। तो आगे मैत्रेय मुनि कहते हैं कि ये वैर भाव बहुत दिन तक चलता रहा, तीसरे अध्याय में। तो एक बार दक्ष एक और बड़ा यज्ञ कर रहा था, बहुत बड़ा यज्ञ कर रहा था और उसमें सारे देवताओं को, ऋषियों को, महात्माओं को आमंत्रित किया था। उस यज्ञोत्सव में ब्रह्मर्षि, देवर्षि, पितर, देवता, ऋषि, मुनि सब जा रहे थे और रास्ते में शिव जी का आश्रम पड़ता था तो कुछ लोग वहाँ रुक कर शिव जी से मिल भी लेते थे। सबको आमंत्रित किया था दक्ष, लेकिन भगवान शिव को कोई भी इन्विटेशन नहीं भेजा। अपने दामाद को नाराज था, बेटी दामाद के पास कोई न्योता नहीं और सारे लोग जा रहे थे। तो आकाश मार्ग से देवता आपस में चर्चा कर रहे थे यज्ञ की, बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है। तो दक्ष कुमारी सती भी सुन ली कि हमारे पिताजी के यहाँ यज्ञ हो रहा है। कैलाश के पास से सब जा रहे थे, गंधर्व जा रहे थे, यक्ष जा रहे थे, उनकी स्त्रियां जा रही थी, खूब सुंदर सुंदर साड़ी गाना पहनकर यज्ञ में भाग लेने जा रही हैं दूसरी दूसरी स्त्रियां। तो सती जी को बड़ा अजीब लगा, तो आकर शिव जी से कहती है, वामदेव मैं सुनी हूँ कि आपके ससुर यज्ञ करा रहे हैं, बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है, सभी देवता वहीं जा रहे हैं, ऋषि मुनि ये सब गंधर्व जा रहे हैं, यक्ष जा रहे हैं, इनकी स्त्रियां जा रही हैं सब, तो हम लोगों को भी वहां चलना चाहिए। तो शिव जी कहे कि नहीं, हम लोगों के पास निमंत्रण थोड़े दिए हैं, नहीं चलना चाहिए, निमंत्रण अपने माता पिता के यहाँ निमंत्रण का इंतजार थोड़े किया जाता है। और सती मनाने की कोशिश कर रही शिव जी का, शिव जी को मनाना चाहती है, कहती है चले वहाँ माता जी से भेंट होगा, हमारे बहन लोग आई होंगी, यज्ञ जब पिताजी घर पर बड़ा यज्ञ करा रहे हैं तो सारी बहन आई होंगी, सब बहनों से भेंट होगा, 16 बहन है तो 15 बहन एक साथ जुटी होंगी, भेंट हो जाएगा, माता पिता जो भी उपहार देंगे हमको, गाना कपड़ा कुछ मिलेगा, एकदम साफ करें उसको हमें लेना चाहिए। तस्मिन भगिन्यो मम भर्तृभिः सुखैः ध्रुवम गमिष्यन्ति सुहृद् दिदीक्षव अहम च तस्मिन् भवता भी कामये सहोपनीतम परिबर्ह मरहितुम। वो जो उपहार देंगे हमको गाना कपड़ा वो भी मिलेगा, चलिए लाभ ही लाभ है, और वहाँ मौसी आई होंगी, बहन आई होंगी, उनसे भेंट होगा, खूब आग्रह कर रही हैं। तो शिव जी कहते हैं तुमको पता नहीं है हम में और तुम्हारे पिता में अनबन हो गया है, वो हमको बुलाए नहीं है, इस स्थिति में वहाँ जाना ठीक नहीं है। तो फिर भी कहते हैं स्त्री स्वभाव होने के कारण बड़ा दिन हो रही है, बार बार उत्सुकता दिखा रहे हैं, जन्मभूमि देखूंगी, बहुत दिन हो गया, वहाँ चलूंगी, कितने लोग जा रहे हैं हमारे पिताजी के घर में, दूसरे दूसरे लोग जा रहे हैं, हम उनकी बेटी हैं, वहाँ हम नहीं जा पाएंगे, ये ठीक नहीं हो रहा है, चलिए पिता के घर पर, माता पिता के घर पर बिना बुलाए जाया जाता है, पति के घर पर, गुरु के घर पर, माता पिता के घर पर बिना बुलाए जाया जाता है, इसमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। कथम सुताया पितृ गेह कौतुकम निशम्य देह सुरवर्ज नेंगते अनाहुता अप्य भियन्ति सहृदम भर्तु गुरुर देह कृतश्च केतनम। गुरु के घर में, पति के घर में, माता पिता के घर में बिना बुलाए जाना चाहिए, चलिए निमंत्रण का इंतजार मत कीजिए, ये ना खूब आग्रह कर रही है, एकदम छटपटा रही है। तो शिव जी हंसते हुए कहने लगे, देखो सुंदरी तुम जो कह रही हो कि बिना बुलाए जाना चाहिए तो ठीक है, तयोदितम शोभन में वो शोभने अनाहुता आप भियंति बंधुसु, बंधुओं के यहाँ बिना बुलाए जाना चाहिए तो बात ठीक कह रही है, लेकिन बिना बुलाए तो तब जाता है जब जाने के बाद उनको कोई दिक्कत ना हो, चलो नहीं बुलाया कोई बात नहीं, लेकिन चले भी गए प्रेम करे कहे चलो नहीं बुलाया फिर भी अपना समझ कर आ गया तब तो ठीक है, लेकिन जब क्रोध के कारण, द्वेष के कारण दिक्कत उसको होने लगेगा तब। विद्या तपोबीत बपुर वयह कुलई सताम गुणई षड भी रसत तमे तरई स्मृतौ हतायाम भृतमान दुर्दिश स्तब्धान पश्यन्ति ही धाम भूयसाम। जो विद्या तप धन सुदृढ़ सुंदर शरीर जीवावस्था और ऊंच कुल, ये 6 चीज जो है ये सत्पुरुषों में तो गुण का काम करता है, नीच पुरुषों में अवगुण हो जाता है, ये खतरनाक हो जाता है और उनकी विवेक शक्ति नष्ट हो जाती है। एक तो असत प्रवृत्ति का है तुम्हारा बाप और दूसरे बन गया अध्यक्ष, नहीं जाना चाहिए। जब उसकी बुद्धि बिगड़ गई धन के कारण पद के कारण तो अब बेटी दामाद नहीं पहचानेगा, तुम समझ नहीं रही हो। और जानती हो आदमी दो चार तमाचा या दो चार लाठी आसानी से सह लेता है, बाण लग जाए एकदम कलेजा में तो आदमी सह लेता है, लेकिन बाघ बाण नहीं सह सकता है। जब दक्ष व्यंग बोलने लगेगा कि कहीं इसको जगह नहीं मिला, फिर आ गया ये प्रेत, ये पिशाच फिर आ गया हमारे जग में, कुछ बोलने लगेगा तो तुम नहीं सह पाओगी। हमारी बात तो छोड़ो, हमको तो आदत है, हम तो उस समय भी सहे आज भी बोलेगा तो सह लेंगे। समस्या तुम्हारे लिए है, तुम नहीं सह पाओगी। जब हमारा अनादर उस समाज में तुम देखोगी ना तो नहीं सह पाओगी। स्वानम यथा बक धियाम दुरुक्ति भी दीवा निशम तप्यति मर्म ताड़ित, दिन को चैन आता है ना रात को निद्रा आती है। जब बात अपने व्यक्ति का बात जब हृदय में लग जाता है तो व्यक्ति बेचैन हो जाता है, इतना बोला, मुझे बोला, ऐसा बोला। बाप बाप कह रही हो, अगर मेरा मेरे साथ दुर्व्यवहार कर देगा तो उसको नहीं सह पाओगी। और तुम सोच रही हो कि बड़ा उपहार देगा, गहना कपड़ा, इतना उटपटांग शब्द बोलेगा कि बर्दाश्त नहीं कर पाओगी, सह नहीं, झेल नहीं पाओगी। और मुझसे बहुत चिढ़ता है, बहुत समझाने का कोशिश करते हैं। सत्वम विशुद्धम वसुदेव शब्दितम तदीयते जत पुमान अमावृत सत्वे च तस्मिन भगवान वासुदेव ही अध्यक्ष जो में नमसा विधीयत। सबके हृदय में रहने वाले भगवान वासुदेव को मैं नमस्कार करता हूँ। मैं तो अपने ढंग से नमस्कार किया ही, लेकिन ये बात नहीं समझा और इस तरह से मेरा अपमान किया। मैं तो झेल लिया, लेकिन तुम नहीं झेल पाओगी, जाने की कोशिश मत करो। मैं तो तुमको अपनी अपना समझ कर शिक्षा दे रहा हूँ, समझ जाओगी तो बहुत अच्छी बात है। यदि ब्रजिष्यस तिहाय मद बचो भद्रम भवत्या न ततो भविष्यति संभावितस्य स्वजनात् पराभव यदा ससद्यो मरणाय कल्पते। शिव जी पहले ही कह दिए, यदि तू मेरी बात न मानकर तुम्हारे मन में आ रहा है कि जाऊंगी 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 तो मैं रोकूंगा भी नहीं, और तुम जिद करोगी तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। क्योंकि जब किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति का, सम्मानित व्यक्ति का अपने आत्मीय स्वजनों के द्वारा अपमान होता है तो तत्काल मृत्यु का कारण बन जाता है, व्यक्ति नहीं सह पाता है। तो व्यक्ति भले सह ले, लेकिन उसका जो प्रिय करने वाला वो अपना व्यक्ति है वो नहीं सह पाएगा। मेरा अपमान उस समाज में होगा और तुम नहीं सह पाओगी, और उसका परिणाम यह होगा कि तुम मृत्यु को प्राप्त करोगी, आत्महत्या कर लोगी, नहीं बर्दाश्त कर पाओगी। इसलिए अच्छा तो यह है कि अपने मन से निकाल दो कि हमारे पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है और वहाँ जाना है। इतना कहकर भगवान शिव चुप हो गए। अब चौथे अध्याय में कहते हैं, तो कभी वो घर से निकलती थी और निकल करके देखती थी कि बहुत लोग जा रहे हैं जा रहे हैं जा रहे हैं। कुछ लोग तो शिव जी के पास आते थे, कुछ लोग आते भी नहीं थे, जा रहे थे। और फिर बाहर देखकर फिर लौट कर शिव जी के पास आती थी, हम अगर बिना पूछे चल दें तो ये नाराज हो जाएंगे, कोई निश्चय नहीं कर पा रही थी। घड़ी के पेंडुलम की तरह कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, घर में आना फिर भीतर आना बाहर आना, ऐसे चल रही थी। अपने स्वजनों से अपने परिवार वालों से मिलने की छटपटाहट खूब थी उनके मन में, अब चले जाएंगे तो मिलेंगे, क्या कहें, स्नेह बस इनके आंख में आंसू भर गया, व्याकुल हो गई, रोने लगी सती, शरीर थर थर कांपने लगा, लग रहा था कि भगवान शिव को क्रोध से जला देगी एकदम, इतना रोषपूर्ण दृष्टि से शिव जी को देख रही थी। लेकिन शिव जी तो समझ रहे थे कि परिणाम क्या होने वाला है, लंबी लंबी सांस ले रही थी और शिव जी के देखते देखते चल दी, अब मानी नहीं, एकदम बर्दाश्त नहीं कर पाई, चल दी सती, बड़ी फुर्ती से अकेले निकल दी, एकदम बिना सवारी के, बिना कार, बिना गाड़ी के चल दी पैदल। अब तो भगवान शिव के गण लोग बताए कि चल दी, अच्छा, तब कहे कि ठीक है, नंदीश्वर जी को, सती जी को बैल पर सवार कराया गया और कहे कि उसका गहना कपड़ा बक्सा उक्सा ले लो, सारा सामान ले लो, ताम सारिका कंदुक दर प्रणाम बुज श्वेतात पत्रव्य व्यजना सृगादि भी गीता यनई दुन्द भी शंख वेणु भी विशेन्द मारूप विटंकिता यही। और जाकर नंदीश्वर जी वहाँ पहुँचा दिए, यज्ञ में पहुँचा कर वो लौट गए, यज्ञशाला में पहुँच गई, वहाँ चारों तरफ वेद ध्वनि हो रहा है, ब्राह्मण लोग मंत्र उच्चारण कर रहे हैं, सारे ब्रह्मर्षि बैठे हैं, देवता लोग बैठे हैं, अलग अलग लोगों का स्थान बना हुआ है, सुंदर ऊंचा ऊंचा आसन है सबको, लेकिन जब सती पहुंची तो माता जी तो बड़ा प्रेम से मिली, आ बेटी आ गई, तुम्हारे यहाँ तो निमंत्रण भी नहीं दिया गया, एकदम मिली। अब बहने भी प्रेम से मिली, लेकिन पिताजी तो सती को देखकर एकदम अरे कैसे आ गई, क्रोध में देख रहा है दक्ष। पिता के द्वारा सती की अवहेलना हुई, पिताजी का मूड देखकर जितने जग में वहाँ उपस्थित परिचित लोग थे, ऋषि लोग, देवता लोग, कोई नहीं बोला सती से, केवल बोलने वाली माँ बोली और बहन, बस। वहाँ जितने उपस्थित थे बहन के अलावा और माता के अलावा किसी भी मनुष्य ने उनका कुछ भी आदर सत्कार नहीं किया, केवल बहन लोग बोली, वे गदगद होकर मिली, गले से लगी। तो बहन लोग कुशल मंगल पूछती है, मौसी जी लोग भी पूछ लेती हैं, वो भी हैं। मौसी कहती हैं कि बेटी आ गई तो बहुत अच्छा हुआ, चलो कुछ खा लो पी लो, स्नान करो, उपहार देना चाहती है, भोजन देना चाहती है, लेकिन सती के तो पहुँचते ही पारा ऊपर हो गया, देख रही है बहन कुशल मंगल पूछ रही, वार्तालाप, माता मौसी सब सम्मान दे रही, सुंदर आसन आदि दे रही, लेकिन स्वीकार नहीं की। पिता आदर नहीं किया है, पिता नहीं बोला है, और पिता के जितने फॉलोअर्स हैं कोई नहीं बोल रहा है, तो अब देखी कि इस प्रकार अनादर हुआ है, तो सोची कि चलो हमारा अनादर कर दिया तो शिव जी के लिए तो जगह होना चाहिए, वो भले नहीं आए, देवताओं के लिए ब्रह्मा जी का सीट है, इंद्र का सीट है, सबकी कुर्सियां लगी हुई हैं, तो घूम घूम कर जग में देख रही हैं, भगवान शिव जी के लिए कहीं आसन नहीं। तो देखी कि पिता दक्ष के द्वारा बहुत बड़ा अपमान हुआ है, तो सती को इतना क्रोध हुआ कि मानो संपूर्ण लोक को जलाकर भस्म कर देगी, इतना क्रोध हो गया। कुछ गण लोग थे शिव जी के, सती के पास, वे लोग भी देख रहे थे, सब लोगों को सुनाकर पिता की निंदा करते हुए सती उसी हरि सभा में बोलने लगी कि भगवान शिव से बढ़कर इस संसार में कोई नहीं है, ये सभी देहधारियों के प्रिय हैं, आत्मा हैं, उनका न कोई प्रिय है न प्रिय है, सभी प्राणियों से प्रेम करते हैं, किसी से वैर नहीं करते, यहाँ आपके सिवा ऐसा कौन है जो उनका विरोध कर सके, पिताजी से करे, हे पिताजी आपके अलावा हमारे पति शिव जी से कोई विरोध नहीं कर सकता। और ब्राह्मणों से फिर कहती है, हे ब्राह्मणों, हे द्विजवरों, आप कैसे भगवान शिव का अनादर कर रहे हैं, आप लोग तो दूसरों के गुणों में भी दोष देख रहे हैं, ऐसा साधु पुरुष नहीं करते, अच्छे लोग ऐसा नहीं करते हैं, बड़े खेद की विषय है कि आप ऐसे भगवान शिव जैसे महापुरुष पर दोषारोपण किए। जो दुष्ट मनुष्य इस स्वरूप जड़ शरीर को आत्मा मानता है और ईर्ष्यावश महापुरुषों की निंदा करता है, तो यह कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि महापुरुष तो इनकी चेष्टा पर कोई ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन इनके अपराध से वह नष्ट हो जाता है। महापुरुष कोमल हृदय के होते हैं, वो असत पुरुषों के द्वारा किए गए अपमान को सह लेते हैं और क्षमा भी कर देते हैं, लेकिन महत पुरुषों के चरणों में जो पवित्रता है, क्षमा करने की क्षमता है, वो नहीं क्षमा कर पाता है, चरण रज क्षमा नहीं करता है, इसलिए इस तरह से महापुरुषों के निंदा रूप जघन्य अपराध तुम लोग कर रहे हो। भगवान शिव का जो ये नाम है, अगर किसी के मुख से केवल उच्चारण हो जाए शिव, तो तत्काल उसका पाप नष्ट हो जाता है, और ऐसे शिव को इस प्रकार द्वेष करने वाला व्यक्ति निश्चित रूप से अमंगल रूप है। सती यहाँ तक कह रही है कि हाय हाय, मैं अपने इस दक्ष से उत्पन्न अपने शरीर को कैसे धारण कर पाऊंगी। शास्त्र का विधान है कि अगर निरंकुश लोग धर्म की मर्यादा की रक्षा करने वाले अपने पूजनीय स्वामी की निंदा करें, तो अपने में उसे दंड देने की शक्ति अगर नहीं है तो कान बंद करके वहाँ से चला जाना चाहिए, और यदि शक्ति है तो उसको पकड़ करके बकवाद करने वाली उसकी जिह्वा को काट लेना चाहिए, अगर दोनों नहीं हो रहा है तो आत्महत्या कर लेना चाहिए। करणौ पिधाय निर्याद्य कल्प ईशे धर्मा वितर्य श्रीभी निभिरस्य माने छिंदा प्रसह्य रुसतिम अस्तिम प्रभुश्चे जिह्वाम असुन्नपि ततो विसिजेत सधर्म। यह धर्म है, निंदा करने वाले की जीभ उखाड़ लेनी चाहिए सामर्थ हो तो, आ नहीं तो कान बंद करके भाग जाना चाहिए, आ नहीं तो आत्महत्या कर लेना चाहिए, तीन में एक तो अब करना पड़ेगा। इस तरह से सती दुखी है, ये सती शरीर में रख कर क्या करूंगी, जो महापुरुषों का अपराध किया है उसे जन्म लेने वाले इस जीवन को धिक्कार है मेरा कि मैं दक्ष के द्वारा जन्म ली हूँ, अगर कहीं भगवान शिव हंसी मजाक में व्यंग में मुझे दक्षायणी कह देंगे तो मैं कैसे सह पाऊंगी, कहीं भगवान कह देंगे कि दक्षायणी दक्ष जैसे दुष्ट से उत्पन्न, तो इस तरह व्यंग बोल देंगे, दक्षायणी नाम से मुझे पुकारेंगे तो मैं नहीं सह पाऊंगी, मुझे बहुत लज्जा आएगी। इसलिए हे दक्ष, हे पिताजी, इसके पहले ही मैं आपके अंग से उत्पन्न इस स्वरूप शरीर को त्यागूंगी, घोषणा कर दी। तुम्हारे अंग से उत्पन्न इस शरीर को मैं नहीं धारण कर पाऊंगी, मैं इसको त्यागूंगी। इस तरह कह करके वो तुरंत बैठ गई वहीं दक्ष के देखते देखते और उस जग में ब्राह्मणों को देखते देखते, और भूमि पर बैठकर मौन व्रत धारण कर ली और आचमन करके पीले वस्त्र को ओढ़कर आंख मूंद कर शरीर त्याग करने के लिए योग मार्ग का अवलंबन ली। आसन को स्थित करके प्राणायाम द्वारा अपने मन बुद्धि इंद्रियों को एक रूप करके अपने पति जगत गुरु भगवान शिव के चरणों का स्मरण करते हुए चिंतन करते हुए अपने आप को एकदम भुलवा दी कि मैं कहाँ हूँ और मैं दक्ष कन्या हूँ। इस अभिमान को त्याग करके मुक्त हो गई और तुरंत ही अपने शरीर में जोगाग्नि उत्पन्न करा दी, आग उत्पन्न हुई और देखते देखते सब लोगों के सामने उस जग मंडप में ही सती शरीर छोड़ दी, जल कर एकदम भस्म हो गई। और उपस्थित जितने लोग थे सती के देह त्याग को देखे, सब लोग हाय 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 करने लगे, एकदम कोलाहल मच गया। तत्पश्यताम खे भूविचाद भूतम महद हा हे तिवादस महान जायत हंत प्रिया दैवत मत्स्य देवी जहान वसुन के न सती प्रकोपिता। इस तरह से चारों ओर हाहाकार मच गया, हाय 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 सती प्राण त्याग दी, प्राण त्याग दी। पृथ्वी तल पर सब जगह फैल गया, सब लोग दक्ष के दुर्व्यवहार की निंदा करने लगे। महादेव की प्रिया सती देह त्याग दी, ये संवाद चारों ओर फैल गया, सारे लोक में संवाद फैल गया। उस समय जो शिव के परिकर कुछ दो चार वहाँ उपस्थित थे, इनके अद्भुत प्राण त्याग को देखकर अस्त्र शस्त्र लेकर दक्ष को मारने के लिए दौड़े, लेकिन उनके आक्रमण को वेग को भृगु जी रोक दिए। अपहतम रक्ष मंत्र उच्चारण करते हुए दक्षिणाग्नि में आहुति दी और बेचारे दो चार लोग शिवगण कुछ नहीं कर पाए, इधर उधर करके बेचारे भाग गए। पांचवें अध्याय में भगवान शिव को संवाद मिलता है, देवर्षि नारद जाकर बतलाते हैं। अब देवर्षि नारद कहे, अपने पिता दक्ष से अपमानित होकर जोगाग्नि के द्वारा अपना शरीर त्याग दी और वहाँ आपके पार्षदों को ऋभुओं ने मारकर भगा दिया। अपनी प्रिया का इस तरह से मृत्यु सुनकर क्रोध के मारे ओठों को चबाते हुए जटा उगारे जो बिजली की तरह चमक रहा था और पृथ्वी पर पटके क्रोध से, और उस जटा से एक इतना भयंकर पुरुष उत्पन्न हुआ वृत्रासुर की तरह, हाथ में त्रिशूल लिए हुए स्वर्ग को स्पर्श कर रहा था। 1000 भुजाएं थी, मेघ के समान श्याम वर्ण, सूर्य के समान जलता हुआ 3 नेत्र था और विकराल दाढ़े ज्वालाएं जटाएं नरमुन्नों की माला पहने हुए तरह तरह के हाथ में अस्त्र लिए हुए हाथ जोड़कर पूछा, भगवान मुझे क्या आज्ञा है, मैं क्या करूं? भगवान भूतनाथ ने कहा, अरे वीरभद्र, तुम मेरा अंश है, मेरे पार्षदों के अधिनायक बनकर जाओ और दक्ष और दक्ष के यज्ञ को नष्ट करो। अब तो केवल आज्ञा पाना था, लिया त्रिशूल और वीरभद्र दौड़ा चला बड़ा भयंकर रूप से एकदम यज्ञशाला में बैठे हुए जितने ऋत्विज जजमान सदस्य ब्राह्मण ब्राह्मणियों सब लोग देखने लगे कि उधर से उत्तर दिशा की ओर धूल कैसे उड़ रहा है। कैलाश से दौड़े तो अब उत्तर तरफ से धूल उड़ता हुआ आ रहा है। सब सोचने लगे, अरे ऐसा अंधेरा कैसे हो रहा है, धूल कहाँ से छा गया, इस समय न आंधी चल रही है न कहीं लुटेरे हैं, अरे इतना, क्योंकि महाराज प्राचीन बरही का राज है, एक कठोर दंड देने वाले वो हैं कि यहाँ चोर बदमाश तो है नहीं। वातान वांति नहीं संति सदस्य वह, न हवा बह रहा है न कोई डाकू है, प्राचीन बरही जीवती होग्र दंड, अभी महाराज प्राचीन बरही जीवित है, गाओ न काल्यंत इदम कृतो रज, इतनी संख्या में गाय भी नहीं, संध्या के समय गाय चलती है तो उनके खुर से धूल उड़ता है, और लोको धुना किम प्रलय आये कल्पते, क्या अभी लोक का प्रलय होने वाला है, ये क्या हो रहा है, इस प्रकार क्या हो गया, संसार में प्रलय का समय तो नहीं आ गया। दक्ष पत्नी प्रसूति और सारी स्त्रियां व्याकुल हो रही हैं, सब सोच रही है कि निश्चित रूप से भगवान शिव का ये अपराध किया है, इसी का कोई फल है, और संहार मूर्ति भगवान शिव का अनादर हुआ है, उसकी पत्नी को मारा गया है। अब तो निश्चित रूप से जैसे प्रलय काल में भगवान शिव अपने जटाओं को बिखेर कर त्रिशूल लेकर तांडव नृत्य करते हैं और अपना तीसरा नेत्र खोलते हैं, सारा जगत चट 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 जलकर भस्म हो जाता है, तो कहीं शिव जी का वो असह्य क्रोध तो उत्पन्न नहीं हो गया, अब सब सोच रहे हैं क्या हो रहा है क्या हो रहा है। जो लोग दक्ष के जग में बैठे थे भय के मारे एक दूसरे को देख रहे हैं क्या हो रहा है क्या हो रहा है। उसी समय दौड़कर शिव के सेवक आए और पूरा जग मंडप को घेर लिए। कोई हजारों हजारों हथियार लिया है तो कोई बिल्कुल बौना है, कोई भूरे रंग का, कोई काले रंग का, कोई मगरमच्छ के समान विशाल पेट है, कोई हाथी के समान है, कोई किसी का थोड़ी नहीं है, किसी के केवल सिर है। और इतना विविध प्रकार के शिव के गण चल रहे हैं, जा करके लगे तोड़ने सारे जगमंडप को, सारे खम्भों को, पिलर को तोड़ने, सारे पत्नीशाला को नष्ट करना, हवन कुंड को तोड़ना, सब पिशाब करना, जगमंडप में पाकशाला को नहस तहस नहस जहां तहां तोड़ फोड़, सारे अग्नि कुंड को बुझा दिए पिशाब करके। एकदम विचित्र वर्णन है। इस तरह से सारे वेदी को तोड़ दिए, कहीं सारे मुनियों को तंग करने लगे, स्त्रियों को धमकाने डराने लगे और पकड़ पकड़ कर भागते हुए देवताओं को पकड़ने लगे और तोड़ने लगे सबको, जो लोग जग में भाग लिए थे। और भृगु ऋषि को पकड़ लिए, बांध लिए और प्रजापति दक्ष को कैद कर लिए। यह भृगु, इसकी दाढ़ी नोच लो। भृगु की दाढ़ी नोच ली गई और पूसा एक देवता था, वो बड़ा हंस रहा था उस समय, उसका दांत तोड़ दिए, हंसते समय जो दांत दिख रहा था। सारे ऋतवी सदस्य जहां तहां भाग रहे हैं, भाग नहीं पाते हैं, शिव जी के गण पकड़ लिए, किसी का आंख निकाल लिए, किसी के दांत तोड़ दिए, तेज तलवार से दक्ष का सिर काट रहे हैं, लेकिन वो सिर कट ही नहीं रहा था, बड़ा दिक्कत हो गया। बहुत कोशिश किए लेकिन सिर नहीं कट रहा, धड़ से अलग नहीं हो रहा था। तो जब किसी प्रकार किसी अस्त्र से दक्ष की त्वचा कट ही नहीं रही थी, तब वीरभद्र को बड़ा आश्चर्य हुआ, देर तक विचार किया तो कहा कि अरे जग में सब दीक्षित है, जग पशु को काटने के लिए जो हथियार है वही इसको काट सकता है, तो जग पशुओं को जो काटा जाता है उस हथियार को लिए और दक्ष रूप जजमान का, जजमान रूप पशु का सिर धड़ से अलग कर दिए। और यह देखकर भूत प्रेत पिशाच आदि उनके वाह वाह, वीरभद्र जी खूब प्रसन्न हुए और उसको लेकर के दक्ष के सिर को दक्षिणाग्नि में डालकर जला दिए और फिर कैलाश पर्वत पर लौट गए। सारा जग तहस नहस, दक्ष जी भी साफ। अब तो चारों तरफ हाहाकार मचा, सारे ब्राह्मण समाज में, देव समाज में, क्या हुआ क्या हुआ, प्रजापतियों के अध्यक्ष साहब ही मारे गए, अब क्या होगा, सब जगह हाहाकार सुनाई दिया। ब्रह्मा जी के पास लोग पहुँचे और सारा वृतांत कह सुनाए। सारी बात जब देवताओं ने सुनाया तो कहे कि देखो ये समर्थ पुरुष से द्वेष करने का यही रिजल्ट होता है। साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, जरे नगर अनाथ कर जैसा। साधु पुरुष की अवज्ञा करने से यही होता है, किसी का भला नहीं हो सकता। जो समर्थ तेजस्वी पुरुष से द्वेष करता है उसका रिजल्ट यही है जो हुआ है। चलो शिव जी के पास चलते हैं, उनसे क्षमा मांगो, प्रसन्न हो जाएंगे तो कुछ होगा। ऐसी अवस्था में सब ब्रह्मा जी के साथ चले कैलाश पर्वत पर। उनके यात्रा का वर्णन है और कैलाश के सौंदर्य का वर्णन मैत्रेय मुनि करते हैं कि बड़ा सुंदर कैलाश शिव जी का प्रिय धाम है। सभी प्रकार के वृक्ष, औषधियां और झुंड के झुंड जंगली जानवर वहां चरते थे, कहीं किसी में राग द्वेष नहीं था। एक ही घाट पर सिंह और हरिन भी रहते थे, सब विहार करते थे। शिव जी का विचित्र दरबार है, विषमता में समता चलता है। शिव जी के सवारी है नंदी बैल और सती का सवारी है सिंह, बैल को खाने वाला, लेकिन एक साथ रहते हैं। शिव जी के गला में सर्प है और उनके बेटा का सवारी चूहा है, सांप खा सकता है चूहा को, और एक बेटा कार्तिकेय का सवारी मयूर है जो सांप को खा सकता है। विषमता में समता शिव जी के दरबार है, जहाँ पर कहीं कोई विषम बुद्धि नहीं है। खूब सुंदर वर्णन है, गहरी कंदरा, ऊंचे शिखर, वहाँ उस पर्वत पर अपने प्रियतमों के साथ विहार करते हुए सिद्ध पत्नियों का क्रीड़ा स्थल, मोरों का शोर, भ्रमरों का गुंजार, कोयलों का कुहू ध्वनि, पक्षियों का कलरव, बड़ा सुंदर कैलाश लग रहा है। बहुत सुंदर कैलाश पर्वत है, वहाँ मंदार, पारिजात, सरल, तमाल, कचनार, आसन, अर्जुन के वृक्ष बड़ा सुहावने हैं, बड़ी सुंदर लग रहे हैं। आम, कनम, नीप, नाग, पुन्नाग, चंपा, गुलाब, अशोक, मौलश्री, कुंद, कुर्बक, शतपत्र, कमल, इलायची, मालती, बड़ी सुंदर सुंदर वृक्ष हैं कैलाश के घाटियों में। तरह तरह के कटहर, गुलर, पीलर, पाकर, बड़, भोज वृक्ष, सुपारी, रागपुज, जामुन, खजूर, अमरा, आम, पियाल, महुआ, तरह तरह के वृक्ष हैं। सब वर्णन कर रहे हैं श्लोकों में, खूब सुंदर। चूतई, कदम्पई, नीपैश, नाग, पुन्नाग, चंपकई, पाट, लाशोक बकुलई कुंदई कुरबकई रपी, बहुत सुंदर वृक्षों का वर्णन है और वहां पर रहने वाले जीवों का। वहां पर रहते हैं बानर सुअर सिंह रिक्ष शाही नीलगाय और कुबेर जी की अलकापुरी है बगल में। और एक वृक्ष है जो विशाल वृक्ष बट वृक्ष जो 100 योजन ऊंचा है, 100 योजन मतलब 400 कोस 800 माइल ऊंचा, और उसी प्रकार उसकी शाखाएं भी फैली हुई हैं। न वहाँ घाम का कष्ट है, न बरसात का कष्ट है, न जाड़ा का। इतने विशाल वृक्ष पर एक भी घोंसला नहीं है, वही है शिव जी का निवास स्थान। वहाँ पर भगवान शिव बैठे हुए हैं, बड़े बड़े ऋषि लोग बैठे हैं और भस्म दंड जटा मृग चर्म धारण किए हुए भगवान शिव बड़ा सुंदर लग रहे हैं। नारद जी कुछ पूछ रहे हैं और उनके उत्तर दे रहे हैं। ऋषि मुनि लोग आ रहे थे, आकर बैठ बैठ कर सत्संग में भाग ले रहे थे, तब तक ब्रह्मा जी भी आ गए। ब्रह्मा जी को देख कर शिव जी तुरंत खड़ा हो गए, तुरंत खड़ा हुए, झुक कर प्रणाम किए। इसके बाद ब्रह्मा जी ने भगवान शिव से चंद्रमौली से बोले, आप संपूर्ण जगत के स्वामी हैं, विश्व के जोनी हैं, आप ही जगत के सृष्टा हैं, हे प्रभु इस जगत की सृष्टि पालन संहार आप करते हैं, आपने ही धर्म और अर्थ की प्राप्ति कराने वाले वेद की रक्षा के लिए दक्ष को प्रकट किया है, आप ही जगत स्वरूप हैं, लोगों के कर्मों के अनुसार फल देने वाले आप हैं। उनके गुणों का वर्णन करते हुए ब्रह्मा जी कहते हैं कि अज्ञानी लोग तरह तरह के दुर्व्यवहार करते हैं महापुरुषों के प्रति, लेकिन महापुरुषों के लिए यह उचित नहीं है कि उनको दंड दिया जाए, क्योंकि ये बेचारे अपने प्रारब्ध से विधाता के द्वारा मारे गए हैं। फिर साधु पुरुष के प्रति कुछ भी अपराध करे तो साधु को ऐसे नहीं करना चाहिए। दक्ष तो अपनी मूर्खता में जो भी किया किया, लेकिन आप अच्छा नहीं किए, आपको सब सह लेना चाहिए। हे देव देव, भगवान कमलनाथ के प्रबल माया से मोहित हो जाने के कारण यदि किसी पुरुष की कभी किसी स्थान में भेद बुद्धि हो जाती है तो साधु पुरुष अपने पर दुख कातर स्वभाव से उसको क्षमा कर देता है, साधु थोड़े उसको लेता है। जस्मिन यदा पुष्कर नाभ माया दुरंत या स्पिष्ट धीय पृथक दिशा कुर्वंती तत्र हेनुकंपया कृपा न साधो दैव बलात् कृते क्रमम। अगर कोई बेचारा दुर्बुद्धि कुछ गलती ही कर दे तो भगवान विष्णु के भक्तों को उसका बदला नहीं लेना चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए, रोकना चाहिए, लेकिन आप इस तरह से किए। भवांस्तु पुनसम परमस्य माया दुरंतया पृष्ठमति समस्त दिक तया हतात्म स्वनुकर्म चेत स्वनुग्रहम कर तुम इहार हसी प्रभु। हे प्रभु, आप सर्वज्ञ हैं, परम पुरुष भगवान की दुस्तर माया से आपकी बुद्धि कभी मोहित नहीं होती है, अतः जिनका चित्त कर्म मार्ग में आसक्त है उसके द्वारा कुछ अपराध भी बन जाए तो उस पर आपको कृपा ही करनी चाहिए। फिर दक्ष के दुर्बुद्धि याचक जग भाग नहीं दिए तो इससे क्या हो गया? अब आप संपूर्ण जग का पुनरुद्धार कीजिए, फिर से पूरा कीजिए। हे प्रभु, ऐसा कीजिए जिससे यजमान जीवित हो जाए और भग देवता का नेत्र मिल जाए, आंख निकाल कर फेंक दिए आपके गण लोग, और भृगु का दाढ़ी मुछ फिर आ जाना चाहिए, पूसा का पहले जैसे दांत आ जाना चाहिए। हे रुद्रदेव, आपके गणों ने जो अस्त्र के बौछार करके सबको घायल कर दिया है, आपके कृपा से ठीक हो जाए। जग पूर्ण होने पर जो कुछ शेष रहे वह आपका भाग होगा। हे जग विध्वंसक, आज यह जग आपके भाग से पूर्ण होगा, आप इसे पूरा कीजिए। अब भगवान शंकर के प्रति जब इस प्रकार प्रार्थना किया गया तो भगवान शिव हंसते हुए कहते हैं, हे प्रजापते, मैं तो ऐसे ना समझो कि कभी चर्चा करता न मन में कोई विचार कर। नाघम प्रजेश बाला नाम बने नानु चिंतये देव माया विभूता नाम दंडस्तत्र धृतो माया। मैं तो केवल सावधान करने के लिए थोड़ा सा दंड दिया, मैं कोई बैर भाव से नहीं कुछ किया हूँ। दक्ष प्रजापति का जो सिर जल गया है, प्रजापते दग्ध शीर्णो भवत त्वज मुखम शीर, बकरे का सिर लगा दिया जाए, भग मित्र देवता के नेत्र से देख लेंगे। अब पूसा का दांत टूट गया तो कोई बात नहीं, अब वो कोई कड़ा अनाज नहीं खाएंगे, आटा आदि पी लेंगे। उनको उसी तरह कान दे दिया जाएगा, यजमान के दांत से खा लेंगे। और देवताओं का जो अंग प्रत्यंग जो कुछ मार पीट हुआ है किसी का कहीं, तो वो सब ठीक हो जाएगा। जागिकों की जिसकी जांग टूट गई, भुजाएं टूट गई, अश्विनी कुमार उनको ठीक कर देंगे। और भृगु जी की दाढ़ी जो नोच ली गई हो, बकरे का दाढ़ी उनको जोड़ दिया जाए। पुरोहित और यजमान दोनों को बकरे से ही संबंध किया गया, एक को दाढ़ी बकरे का और यजमान का सिर ही बकरे का बना दिया गया। तो इस प्रकार भगवान शंकर के वचन सुनकर सब लोग प्रसन्न हो गए, धन्य है, सब लोग प्रशंसा किए। अब ब्रह्मा जी कहते हैं कि यहाँ से तो जो कुछ अब व्यवस्था दिए, लेकिन अब जगशाला में चलिए और वहाँ चल करके जग को भी पूरा कीजिए। फिर ब्रह्मा जी साथ लेकर शिव जी को गए, शिव जी भी पहुँचे और वहाँ दक्ष की धड़ को जग पशु के सिर से जोड़ दिया गया, बकरा का सिर के साथ दक्ष जगा। तुरंत दक्ष को भान होने लगा कि मैं भगवान शिव के प्रति अपराध किया। शंकर द्रोह की कालिमा से उसके हृदय जो कलुषित था वह स्वच्छ हो गया और महादेव की स्तुति करने लगा और अपने दुर्व्यवहार से बेटी सती के मरण का स्मरण होने लगा और बड़ी स्नेह के साथ और भगवान शिव के प्रति उत्कंठा से उनके आंखों में आंसू गिरने लगा और बड़ी विशुद्ध भाव से भगवान शिव की स्तुति किया है दक्ष। उसका वर्णन कहते हैं कि हे भगवान, मैंने आपका अपराध किया, अब होश आया। कभी कभी दुष्ट लोग समझाने से नहीं समझते हैं, बिना पीटे बिना मारे नहीं समझते हैं। हनुमान जी लंका में जा रहे थे तो एक लंकिनी थी, वो कहने लगी, हनुमान जी देखिए, मैं यहाँ किसी को जाने नहीं देती, यहाँ पर जाने वाले जो भी आते हैं लंका में, मैं यहाँ गेट पर रहती हूँ और उसको भोजन करती हूँ, लोग तो मेरा आहार है, आपको भी नाश्ता करूंगी, जाने का तो कोई सवाल नहीं। तो कहे कि देखो भाई, हमको कुछ विशेष काम से जाना है। कहने लगी कि लंका में जाने वाले जितने चोर है ना, उनका मैं भोजन करती हूँ, कोई लंका में चोर नहीं प्रवेश कर सकता। अच्छा अच्छा, लंका में चोर जो जाते हैं उसको तुम खा जाती हो? तो हाँ। खींच करके एक तमाचा हनुमान जी मारे खड़े, अरे लंकिनी, वो चोर जो दूसरे की पत्नी को चुरा कर इसी लंका में प्रवेश किया, उसको कैसे छोड़ दी? खींच कर एक तमाचा, दूसरे के पत्नी को लेकर जब जा रहा था तो उसको क्यों नहीं नाश्ता की? खींच कर जब तमाचा मारी तब कहती है, ताप स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिए तुलाई कहंग तुले नताही सकल मिली जो सुख लो सत्संग। तब उसको होश हुआ और कहती है कि हे तात, आज मैं साधु संघ की महिमा समझी तमाचा लगने पर। तब कहती है कि वास्तव में आप साधु पुरुष हैं, मुझको होश हो गया, आप अपना आपका काम सिद्ध होगा, आप जाइए, रास्ता दे दी और सत्संग की महिमा गाने लगी कि सारे स्वर्गीय सुखों को एक तराजू पर रखा जाए और साधु संघ के एक क्षण के साधु संघ को, तो तुले नताही सकल मिली जो सुख लो सत्संग। और प्रार्थना करने लगी, आपको कोई रोक नहीं सकता, मुझे ऐसा वरदान मिला था कि जो आएगा खा जाऊंगी और जो मुझे पराजित कर देगा, धरती में गिरा देगा मारकर, वो निश्चित लंका पर विजय प्राप्त करेगा। तो जाओ ये वीर हनुमान, तुम्हारी सफलता मिलेगी, अब निश्चित है कि रावण के जाने का टाइम हो गया। सारी घोषणा कर दी और उनको छुट्टी दे दी और सत्संग की महिमा गाने लगी। तो दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों को ऐसे ज्ञान नहीं होता है, जब दंड मिला है दक्ष को तो प्रार्थना करता है, कह रहा है कि अनुग्रह किए हैं प्रभु आप, और भगवान तो आचारहीन नाम मात्र के ब्राह्मणों की उपेक्षा भी नहीं करते, हम लोग तो ऐसे यज्ञ कर रहे हैं, भगवान श्री हरि भक्तों से ब्राह्मणों से प्रेम करते हैं, जैसे चरवाहा लाठी लेकर गांवों की रक्षा करता है, वैसे आप सारे विपत्तियों से हम ब्राह्मणों की रक्षा करते हैं। मैं आपके तत्व को नहीं जानता, इसलिए भरी सभा में बागबाणों से आपको बेधा, पहले दमाद समझकर इतना बोल रहे थे, अब भगवान समझकर स्तुति कर रहे हैं। तमाचा लगा तब पता चला कि हमारा दमाद भगवान है। जब सिर कटा तब, हे पूज्यतम, मैं तो आप जैसे पूज्यतम महानुभावों के अपराध के कारण नरक आदि लोकों में गिरने वाला हूँ, आप कृपा करके मुझे उबार लिए, मुझ में कोई गुण नहीं है, हे प्रभु मैं कैसे आपकी स्तुति करूँ? बहुत प्रार्थना किया तब भगवान आशुतोष प्रसन्न हो गए। ब्राह्मण पंडित सबको ठीक ठाक करके कहे कि भाई आप लोग यज्ञ कीजिए। यज्ञ से जो अधूरापन था वो पूरा किया गया और इसके बाद उस यज्ञ में भगवान पधारे, स्वयं भगवान। तो भगवान जब प्रकट हुए, उनके रूप का वर्णन करते हैं, बड़ा सुंदर रूप था, बड़ी सुंदर कांति, यज्ञशाला एकदम जगमगा गया, भगवान आठ भुजाओं से युक्त थे। भगवान भी विचित्र है, कभी खूब सुंदर द्विभुज, कभी चतुर्भुज, कभी अष्टभुज, कभी सहस्त्रभुज, विराट रूप, बड़ी सुंदर रूप था, कुंडल धारण किए हुए थे, सुंदर अलकावली थे और मुख कमल पर भौरों के गुंजायमान आभूषण धारण किए थे। भक्तों की रक्षा के लिए भगवान आठ भुजाओं में शंख, चक्र, पद्म, बाण, धनुष, गदा, खड़ग ढाल लिए हुए आयुधों के साथ खड़े थे। बहुत सुंदर भगवान लग रहे थे पीताम्बर धारण किए हुए, और पार्षद लोग उनको पंखे चावल डुला रहे। तो भगवान पधारे हैं, इनको देख करके इंद्र ब्रह्मा महादेव ऋषि गण सब लोग खड़ा होकर प्रणाम किए, हाथ जोड़ करके भगवान के सामने सब लोगों ने भगवान की स्तुति करते हैं। सबसे पहले दक्ष प्रजापति भगवान के चरणों में प्रणाम करके बड़े विनीत भाव से कहते हैं कि हे प्रभु, हे भगवान, अपने स्वरूप में आप बुद्धि की जागरादी संपूर्ण अवस्थाओं से रहित शुद्ध चिन्मय भेद रहित हैं। आप माया का तिरस्कार करके स्वतंत्र रूप से विराजमान रहते हैं। आपकी माया सबके ऊपर हावी है, लेकिन आप मायापति हैं। सारे लोग माया से मोहित है। शिव ब्रह्मा को मोही को है बपुरान, असजिए जानी भजही मुनि मायापति भगवान। सबको मोहित कर देती है आपकी माया, आप मायापति हैं। ऋत्विज लोग कहते हैं कि हे प्रभु, रुद्र के प्रधान अनुचर नंदीश्वर के साप के कारण हमारी बुद्धि कर्मकांड में फंसी हुई है, हम क्या कहें। आपके तत्व को नहीं जान पाते हैं। धर्म प्रवृत्ति के प्रयोजक वेदत्रयी के प्रतिपादक जग को हम आपका स्वरूप मान रहे हैं। सदस्य लोग कह रहे हैं कि हे प्रभु, अज्ञानी जीव कामनाओं से पीड़ित होकर मृग तृष्णा के समान देह गेह का बोझ ढोता है, हम आपके चरणों के शरण में आए हैं, हमें उबारिए। रुद्र कहते हैं, हे वरदायक प्रभु, आपके उत्तम चरण सकाम पुरुषों के पुरुषार्थ को प्राप्त कराने वाला है, संपूर्ण पुरुषार्थ को प्राप्त कराता है आपका चरण कमल। किसी भी वस्तु की जिसे कामना नहीं है, ऐसे मुनि जन भी आपके चरणों की उपासना करते हैं। आपके परम अनुग्रह से मैं इनके कहने सुनने का कोई विचार नहीं करता। भृगु जी उनके चरणों में स्तुति करते हैं, आप अपने शरणागत भक्तों के रक्षक हैं, सुहृद हैं, आप मुझ पर कृपा कीजिए, प्रसन्न होइए। सभी लोग प्रणाम कर रहे हैं अलग अलग ढंग से। ब्रह्मा जी प्रणाम करते हुए कहते हैं, प्रभु, इस संपूर्ण विश्व के रूप में आप ही हैं, माया प्रपंच से आप सर्वदा अलग हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। इंद्र भी कहते हैं, हे अच्युत, आप इस जगत को प्रकाशित करके जगत की रक्षा करते हैं अपने अष्ट भुजाओं से। सिद्ध लोग कहते हैं, प्रभु, हमारा मन रूपी हाथी विविध प्रकार के भावनाओं में पड़ा हुआ है, आपकी कथा की सरिता में गोता लगाने पर इस संसार रूप दवानल का स्मरण नहीं होता है, तो आपकी कथा ही सार है। जजमान पत्नी कहती है कि हम आपका स्वागत करते हैं, नमस्कार करते हैं, प्रभु आप मुझ पर प्रसन्न होइए। हे लक्ष्मीपति, आपकी प्रिया लक्ष्मी के सहित आप हमारी रक्षा कीजिए। लोकपाल लोग इसी तरह भगवान की प्रार्थना करते हैं, प्रभु आप समस्त अंतःकरण के साक्षी हैं, आप हम पर कृपा कीजिए, यह संसार में जो संबंध प्रतीत हो रहा है आपकी माया है। वेद भी उनको नमस्कार कर रहा है, अग्नि नमस्कार कर रहा है, अलग अलग देवता फिर ग्रुप में देवता नमस्कार कर रहे हैं, सभी लोग गंधर्व उनके चरणों में नमस्कार कर रहे हैं, विद्याधर और ब्राह्मण लोग फिर कह रहे हैं कि आप यज्ञ स्वरूप हैं प्रभु। जब लोग आपके नाम का कीर्तन करते हैं तब यज्ञ के सारे विघ्न दूर होते हैं। हमारा यह यज्ञ स्वरूप सत्कर्म नष्ट हो गया था, लेकिन आपके दर्शन की इच्छा कर रहे थे, अतः आप हम पर प्रसन्न होइए, हम आपको नमस्कार करते हैं। इस तरह ब्राह्मण लोग अंत में कहते हैं, यज्ञ पूरा होता है आपके नाम कीर्तन से। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सारे यज्ञों के भोक्ता भगवान जब प्रसन्न हो गए तब भगवान बोलते हैं कि जगत का परम कारण मैं हूँ, महादेव हैं और शिव हैं, और हम ही सबके साक्षी हैं, आत्मा हैं। इसलिए हे विप्रवर, हम जगत की रचना पालन करने के लिए ब्रह्मा विष्णु शिव के रूप में आते हैं। हम ब्रह्मा विष्णु महेश्वर तीनों स्वरूपता एक हैं, लेकिन संपूर्ण जगत की रक्षा पालन और संहार के लिए आते हैं, इसमें कोई भेद नहीं है। इस विचार को, इस ज्ञान को समझ कर, तब शांति प्राप्त की जाती है। त्रयाणा मेक भावानाम यो न पश्यति वै भिदाम सर्वभूत तात्मनाम ब्रह्मन स शांति मदिगच्छति। जो स्वरूप तह एक समझकर भजन करते हैं उनको शांति मिलती है। फिर मैत्रेय जी आगे कहते हैं कि दक्ष प्रजापति भगवान की आज्ञा से देवताओं का जजन किया और फिर एकाग्रचित से भगवान शंकर को विशेष रूप से पूजन किया और जग समाप्ति का उपसंहार करते हुए अवभृत स्नान किया और फिर अपने पुरुषार्थ से सब प्रकार की सिद्धियों को प्राप्त की और दक्ष प्रजापति को तुम्हारी सदा धन में बुद्धि रहे ऐसा आशीर्वाद देकर देवता लोग चले गए वहां से। त्रे मुनि कहते हैं कि वो सती जो यज्ञ स्थल में अपना शरीर त्याग दी थी फिर वही हिमालय की पुत्री बनी मैना के गर्भ से और उस समय उनका नाम हुआ पार्वती। तो पर्वत की पुत्री होने के कारण वो पार्वती हुई सत्य। फिर बाद में वही अंबिका नाम से जन्म ली, भगवान शंकर को वरण करने के लिए तपस्या की और बाद में भगवान शिव उनको ग्रहण किए, फिर उनकी पत्नी बनी। वो नित्य पत्नी है। यज्ञ विध्वंस करने वाला भगवान शिव का चरित्र मैंने बृहस्पति के शिष्य उद्धव जी से सुना था। मैत्री मुनि कह रहे हैं, हे कुरुनंदन, महादेव जी का यह परम पवित्र जश आयु को बढ़ाने वाला है और पाप पुंज को नष्ट करने वाला है। जो पुरुष भक्ति भाव से नित्य प्रति श्रवण और कीर्तन करता है वो अपने पाप राशि को नाश कर देता है। मैत्री मुनि आगे वर्णन करते हैं, ब्रह्मा जी के विरक्त पुत्रों में शनकादिक और नारद प्रसिद्ध हैं, जो विवाह नहीं किए, लेकिन और नैष्ठिक ब्रह्मचारी पुत्र हैं। शनकादिक 4, नारद 5, ऋभु 6, हंस 7, अरुणी 8 और जति 9। 9 लोग, 4 एक साथ और 5 अलग, नारद, ऋभु, हंस, अरुणी और जति, ये नैष्ठिक ब्रह्मचारी पुत्र थे। और फिर आगे अधर्म भी ब्रह्मा जी का ही पुत्र था और उसकी पत्नी थी मृषा। तो अधर्म के कुछ वंश का वर्णन करते हैं। अधर्म ने मृषा से दंभ और माया, पुत्र और पुत्री के रूप में जन्म दिया और दोनों जोड़ुआ संतान आपस में विवाह कर लेते थे, क्योंकि अधर्म का संतान है तो इसमें कोई आश्चर्य करने की कोई बात नहीं है। दंभ अपनी बहन माया को अपनी पत्नी बनाया और उससे लोभ और निकृति सठता उत्पन्न हुए। तो लोभ निकृति से क्रोध और हिंसा को जन्म दिया और क्रोध हिंसा फिर आपस में कली और दुरुक्ति को उत्पन्न किए, कली और गाली, और कली और दुरुक्ति से भय और मृत्यु, भय और मृत्यु से यातना और निराय उत्पन्न हुए, निराय नरक। फिर कहते हैं कि मैं संक्षेप में इन वंशों को सुनाया, अब मैं पवित्र कीर्ति स्वयंभू मनु के पुत्रों का वर्णन करता हूँ। थातः कीर्तये वन संपूर्ण कीर्ते कुरुद्वः स्वयंभूस्यापि मनोर हरे रंसांश जन्मना। भगवान हरि के अंश से उत्पन्न महाराज स्वयंभू मनु के पुत्रों का वर्णन करता हूँ। प्रिय व्रतो उतान पादो सदरूपा पते सुतऊ वासुदेव से कलया रक्षयाम जगत स्थित। दो पुत्र हुए, प्रिय व्रत और उतान पाद। तो उतान पाद के चरित्र को अब यहाँ कह रहे हैं। जाये उतान पाद से सुनिति सुरुचिस्तयो सुरुचु प्रेयसी पत्नु नेत्रा यत सुतो ध्रुव। उतान पाद महाराज ने दो विवाह किया, एक का नाम था सुनीति और एक का सुरुचि। उनमें सुरुचि राजा को अधिक प्रिय थी और सुनीति सुनीति के पुत्र थे ध्रुव। एक दिन महाराज उतान पाद सुरुचि के पुत्र उत्तम को गोद में लेकर राजा राज सिंहासन पर बैठा था और वहीं पर सुरुचि थी उत्तम की माँ। तो ध्रुव देख लिया कि पिताजी के गोद में उत्तम है तो ध्रुव के मन में भी आया कि हम भी पिता के गोद में चढ़ेंगे। छोटा बालक था, अब चढ़ने का कोशिश करने लगा। राज सिंहासन ऊंचा था, उसको पकड़ कर चढ़ने लगा, अपने से चढ़ नहीं पा रहा था, हाथ बढ़ा रहा था। तो महाराज उतान पाद को रिस्पॉन्स करना चाहिए, हाथ बढ़ाकर गोद में ले लेना चाहिए। दोनों बेटों को गोद में ले लेते तो क्या हो जाता, लेकिन उनका कंट्रोलर वही था सुरुचि। सुरुचि वही थी और सुरुचि बच्चे से डाह करती थी और उसके सामने राजा कोई रिस्पॉन्स नहीं दिए। ध्रुव प्रयास कर रहा था चढ़ने के, कभी पिताजी के तरफ कभी सौतेली माँ के तरफ कि तुम भी थोड़ा सहायता कर दो, चढ़ा दो पिता के गोद में, और पिताजी के तरफ की हाथ बढ़ाकर मुझे ले लीजिए। ध्रुव को तो कोई अनबन था नहीं, वो तो बेचारा गोद में चढ़ना चाहता था। कभी माताजी के तरफ माँ जी हेल्प कीजिए, माताजी हेल्प कीजिए, तब तक माँ डांटने लगी, नव वत्स निरपते धिष्णम भवान रोडित मरहती। अरे बेटा तुम नहीं चढ़ सकते ऊपर। ध्रुव का कौन कौन नहीं चढ़ सकता है, मैं कहा भवान भवान आप नहीं चढ़ सकते हैं। एक छोटे को भवान कहने की क्या जरूरत है, व्यंग है। भवान तो बड़े को कहा जाता है, नहीं तुम कहना चाहिए तुम नहीं चढ़ सकते हो। तो कह रही आप नहीं चढ़ सकते ऊपर, क्यों मैं राजा का बेटा नहीं हूँ क्या। न गृह तो मयास्तम कुक्षावपी निपात मजा। अरे तुम राजा का बेटा है तो क्या हो गया, तुम रानी का बेटा नहीं है, इससे क्या हो गया, तुम राजा का बेटा है लेकिन तुम रानी से नहीं जन्मा है, मैंने तुमको कोख में नहीं धारण किया है, मैं रानी हूँ तुम्हारी माँ नहीं। बालो सी बतनात मानम अन्य स्त्री गर्भ संभृतम। अरे बच्चे हो, नादान हो, नहीं जानते हो, तुम किसी दूसरे स्त्री के गर्भ से जन्मे हो, रानी से नहीं जन्मे हो। नूनम वेद भवान जस्य दुर्लभेर्थे मनोरथ, इसलिए बेटा ऐसा दुर्लभ मनोरथ मत करो, ये पूरा होने वाला नहीं है। राजा के गोद में तो रानी का बेटा बैठ सकता है, और वो भी राज सिंहासन पर। इतने ऊंचे आसन पर बैठने का साहस मत करो। लेकिन ध्रुव तो कहते मैं तो बैठूंगा, बैठना चाहते हो तो मैं उपाय बताती हूँ। तपसा राध्य पुरुषम तस्य अनुग्रहेण में गर्भे तुम साधयात्मानम यदीक्षसि निपासनम। अरे बेटा, यदि तुमको सचमुच राज सिंहासन की इच्छा है तो जाओ परम पुरुष की तपस्या करो नारायण की, और उनकी तपस्या करके उनके कृपा की भीख मांगो, और फिर मेरे गर्भ में जन्म लो, तब इस सिंहासन पर चढ़ सकते हो। तुमको सिंहासन पर चढ़ने के लिए भगवान नारायण की तपस्या करना पड़ेगा, दूसरे की बस की बात थोड़े है। देखिए, सुरुचि क्रोध में बोल रही है, डाह में बोल रही है, लेकिन राजा की रानी है, वैष्णव सिद्धांत जानती है कि किसी को जन्म देने का अधिकार केवल परम पुरुष को है, दूसरे को नहीं। दोबारा जन्म लेकर मेरे कोख में जब जन्म लोगे, रानी के गर्भ से आओगे, तब सिंहासन पर बैठ सकते हो। तो इसके लिए बेटा प्रोसेस थोड़ा कठिन है, भगवान विष्णु की आराधना करना पड़ेगा, और वो जब प्रसन्न हो जाएंगे तब कहना कि हे प्रभु, मुझे सुरुचि माता के गर्भ में जन्म दीजिए। तब प्रार्थना करोगे ना, तब भगवान चाहेंगे तो तुमको मेरे गर्भ से जन्म देंगे, तब उत्तम की तरह इस सिंहासन पर बैठ जाना बेटा। समझा? कहने का मतलब कि इस शरीर को तो तुम्हें छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि तुम हमारे गर्भ से जन्म नहीं लिए हो। अगर इस आसन पर चढ़ना है, अब तो क्षत्रिय का बालक डंडे से चोट खाए सर्प की तरह एकदम फुफकार मारने लगा, माता के कठोर वचनों को सुनकर एकदम क्रोध से तिलमिला गया 5 वर्ष का बालक। मुझे इस सिंहासन पर चढ़ने के लिए दोबारा जन्म लेना पड़ेगा तुम्हारे गोद से? लंबी सांस लेने लगा। उत्तानपाद चुपचाप सुन रहा है, उसको मना करना चाहिए, बच्चे से क्यों लग रही हो, चढ़ा दो, बढ़ाओ गोद में, ले लेता हूँ। लेकिन इतना हिम्मत नहीं था इस तैयार महाराज का, उत्तानपाद का इतना हिम्मत कि सुरुचि कुछ दूसरी बात कर रही है और उसके विरोध कर दें? नहीं। अब तो बालक एकदम रोने लगा, और रोते हुए लंबी सांस लेते हुए मानो कोई बहुत जबरदस्त पीट दिया है, ऐसे रोते हुए अपनी माँ की तरफ चल दिया। अब आसन पर चढ़ने की बात छोड़कर दोनों ओठ फड़क रहे थे क्रोध के मारे, आंखों से आंसू गिर रहे थे, सिसक सिसक कर रो रहा था। इस तरह से जब सुनी थी, देखी कि हमारा बेटा रो रहा है, तो गोद में उठा ली। बेटा कौन मारा है, क्या हो गया बेटा, क्या हो रहा है, बच्चा बोल नहीं रहा है। दूसरी दासियां इस दृश्य को देखी थी बगल में खड़ी होकर, तो दासियों ने बतलाया कि रानी जी, महारानी सुरुचि ने बड़ा कठोर वचनों से इस बच्चे का अपमान किया। मैंने सारी किस्सा सुना दी, सुरुचि ऐसे की कि तुम तपस्या करो, मेरे गर्भ से जन्म लो। सौत की बात सुनकर दवानल से जली हुई बेल लता की तरह मुरझा गई, संतप्त हो गई, आंखों में आंसू भर गया, लेकिन कही, बेटा तू किसी भी प्रकार अपनी सौतेली माँ की अमंगल की कामना मत करना। कोई बात नहीं, वो ठीक कह रही है, सुरुचि ने जो कुछ कही है वो ठीक कही है। वास्तव में राजा रानी तो उसी को मानते हैं, हमको तो दासी कहने में भी उनको लज्जा आ रही है। इस समय हमारा तो स्थान दासियों की तरह भी नहीं है, तू इस मंद भागिनी के गर्भ से जन्म लिया है बेटा, इसलिए सुरुचि जो कही है ना वो ठीक कही है। वास्तव में तुमको इस सिंहासन पर चढ़ने की इच्छा है तो बेटा तुमको भगवान का भजन करना पड़ेगा। वो सौतेली माँ दाह में बोली है, फिर भी उत्तम बात कही है, जो उसने भगवान परम पुरुष की आराधना की बात कही वो अत्यंत उत्तम है बेटा, एकदम उत्तम है। उन्हीं की कृपा से तुम कुछ भी प्राप्त कर सकते हो। आतिष्ठ तत्ताप विमत सरस्ता मुक्तम समत्रापि यदव्य लीकम आराधया धोक्षज पाद पद्म यदीक्षसे ध्यासन उत्तमो जथा। बेटा यदि तुम उत्तम की तरह राज सिंहासन पर बैठना चाहते हो तो भगवान अधोक्षज की आराधना करो, उन्हीं परम पुरुष की आराधना करके तुम्हारे दादा मनु महाराज इतने बड़े ऊंचे पद को प्राप्त किए, ब्रह्मा जी प्रजापतियों के मालिक हैं, और बड़ी बड़ी दक्षिणा देने वाले यज्ञों के द्वारा तुम्हारे दादा स्वयंभू मनु ने अनन्य भाव से भगवान यज्ञ पुरुष की आराधना किया है, और उन्ही की कृपा से वैभव सुख राज मिला है बेटा, इसलिए तुम उन्हीं का भजन करो। तो मानो ध्रुव कहे कि माताजी कहाँ उनका भजन करने जाऊँ, कहाँ मिलेंगे, तो कहती है बेटा वो वन में एकदम एकांत में जाकर उनका भजन करना पड़ता है। तो मानो ध्रुव महाराज कहे कि वहाँ हमारा पालन कौन करेगा माता, मुझे भोजन कौन देगा, मुझे कौन पोषण करेगा, तब कहती है तमेव वत्सहस्रयभृत्य वत्सलम मुमुक्षुभि मृग्य पदाब्ज पद्धतिम अनन्य भावे निज धर्म भाविते मनस्यवस्थाप्य भजस्व पुरुषम। हे बेटा तमेव वत्सा स भृत्य वत्सलम। अरे बेटा हमारे जैसे लाखों करोड़ों माताओं के अंदर अपने पुत्रों के प्रति जो स्नेह है ममता है ना, उसे हजारों गुना ज्यादा ममता भगवान को अपने आश्रित भक्तों के प्रति है, इसलिए उन्हें भृत्य वत्सल कहा गया है। भगवान अपने भक्तों से जितना प्रेम करते हैं उतनी सामर्थ किसी माता पिता को अपने बच्चों में से करने की क्षमता नहीं है बेटा, वो तो सर्व समर्थ ईश्वर है। तमेव वत्सा से भृत्य वत्सलम। अपने आश्रित भक्तों का सब तरह से पालन भगवान करते हैं। आ मुमुक्षु भी मृग पदाब जो पद्धतिम, जो मुमुक्षु लोग हैं मुक्ति चाहने वाले, उन्हीं भगवान के चरण कमल को खोजते रहते हैं जंगल में जाकर वन में जाकर। अनन्य भावे निज धर्म भाविते, सब कुछ छोड़कर अनन्य भाव से भगवान का भजन करने वाले मनस्वस्था पे भजस्व पुरुषम। अपना चित स्वधर्म पालन से पवित्र हुए चित में भगवान पुरुषोत्तम को अनन्य भाव से हृदय में बैठा कर भजन करो बेटा, जाओ भजन करो, उन्हीं परम पुरुष का भजन कर लो। इस तरह से सुनीति जी लगी उपदेश करने, भजन करो बेटा। देखो बेटा उन कमल दल लोचन श्री हरि को छोड़कर तेरे दुख को दूर करने वाला कोई दूसरा नहीं है। नान्य तथा पद्म पलाश लोचनाथ, भगवान कमल नयन भगवान विष्णु को छोड़कर दुख छिदम ते मृग्यामी कंचना, मैं नहीं देख पाती हूँ कि तुम्हारे इस दुख को दूर करने वाला और कोई है, कोई नहीं है बेटा। यो मृग्यते हस्त गृहित पद्मया श्रिय तरंगय विमृग्य मारया, मानो लक्ष्मी अपने हाथ में टार्च लेकर उन्हीं को खोजती है। जो हाथ में लक्ष्मी जी कमल लेकर घूमती है ना, वो कमल क्या है, एक लाइट है, टार्च है, दुनिया में घूम घूम कर अपने प्रियतम को खोज रही है। लक्ष्मी जी दीपक की भांति हाथ में कमल लिए निरंतर हरि को खोजा करती है। तो जो लक्ष्मी जिन चरणों को खोजती रहती है उन्हीं हरि की आराधना करो बेटा, तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। बाहरी सुनीति जी 5 वर्ष के बच्चे को भजन करने की शिक्षा देने लगी। छोटा सा बच्चा, ठीक है माता जी मैं भजन करूंगा, निकल पड़ा, माँ के चरण पकड़ा, प्रणाम किया, आशीर्वाद लिया, चल दिया। रास्ते में नारद जी मिलते हैं, नारद जी पूर्व परिचित ऋषि हैं, दरबार में आते हैं, ध्रुव के चरणों में प्रणाम करता है। नारद जी अपने पाप नाशनी हाथ को सिर पर रखते हैं, बेटा इधर कहाँ, जंगल की ओर कहाँ जा रहे हो बेटा। अब नारद जी से ध्रुव तो झूठ बोल नहीं सकता, कहा कि ऋषिवर क्या कहें, हमारी सौतेली माँ के बाग बाण हमारे हृदय को बीध दिया है और मैं परम पुरुष की आराधना करने के लिए वन में जा रहा हूँ। तो नारद जी कहते हैं बाप रे बाप, बहुत तेज क्षत्रियाणाम मान भंगम अमृष्यताम बालो अप्य हम हृदय धत्ते यत समातु असद बचा। बाप रे बाप, क्षत्रियों का कैसा अद्भुत तेज, छोटा सा बालक 5 वर्ष का नन्हा सा बच्चा, इसके हृदय में इतनी मान, इनका मान भंग हो गया, सौतेली माँ के कटु वचन को नहीं सह पा रहा है, मन में सोच रहे नारद जी। तब कहते हैं अरे बेटा अभी तो तू खाने खेलने लायक है, क्या तपस्या करेगा, जब उम्र हो जाएगा तब भजन कर लेना, चलो हमारे साथ। अरे जीवों को कर्मानुसार अपमान सम्मान मिलता है, तुम छोटा सा बच्चा अगर माँ अपमान ही कर दी तो कौन कोई दूसरा पराया किया है, अगर दूसरा भी कर देता है तो अपने कर्मानुसार सम्मान और अपमान मिलता है बेटा, तू क्यों चिंता कर रहा है, चलो 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 घर चलो मेरे साथ चलो। ये जोगी लोग जन्म जन्मांतर से चित्त को एकाग्र करके समाधि में बैठते हैं, फिर भी भगवान का चरण उनके चित्त में आता है कभी नहीं, और तुम्हारे जैसा छोटा बच्चा, व्यर्थ के हट को छोड़ो बेटा, लौट चलो घर। मुनय पदवीम जस्य निसंगेरु जन्म भी नव विदुन मृगयंतोपि तीव्र जोग समाधिना। अरे बेटा ये संभव नहीं है, तू हट छोड़ो घर चलो, और जब सयाना हो जाना बड़ा हो जाना तब परमार्थ का काम कर लेना। अरे बेटा विधाता के अनुसार सुख दुख मिलता है, मान अपमान मिलता है, क्या चिंता कर रहे हो। गुणाधिक्यान मुदम लिप्सेत अनुक्रोशम गुणाधमात मैत्रीम समानात अनविक्षे न तापैर विभूयते, कि अपने से अधिक गुणवान को देखकर प्रसन्न होना चाहिए कि चलो भगवान की कृपा से इसको सम्मान मिल रहा है, इसको आदर मिल रहा है, या इसको धन मिला है। तो गुणाधिकान मुदम लिप्से अनुक्रोशम गुणाधमात, और अपने से छोटा है तो उस पर दया करना चाहिए। कृपा करनी चाहिए, अगर उम्र में, बुद्धि में, ज्ञान में या धन में कम है तो उस पर दया की भाव रखना चाहिए। और मैत्रीम समाना, अगर कोई समान गुण वाला है तो उसे मित्रता रखनी चाहिए। इस प्रकार रखने से न तापय रवि भूयते, ऐसा करने से किसी भी व्यक्ति को दुख नहीं होगा। अधिक गुण मिल रहा है तो प्रसन्न हो, और छोटा है तो दया करो, समान है तो मैत्री करो। तीन ही व्यवहार है, बीच में अब कोई व्यवहार नहीं है। तो ध्रुव जी कहते हैं कि भगवान सुख दुख से जिनका चित्त चंचल हो जाता है उनके लिए तो आप कृपा करके बहुत अच्छा उपदेश कर रहे हैं, लेकिन मेरे जैसे अज्ञानियों की दृष्टि तो वहाँ तक पहुँच नहीं पाती है। और इसके बाद भी मैं अविनीत हूँ, तथापि मैं विनीतस्य छात्रम घोर विपेयुष, मैं ब्राह्मण तो हूँ नहीं कि बस क्षमा कर दूंगा। क्षत्रिय स्वभाव है, विनय मुझ में है नहीं। और सुरुचि के कटु वचन सुरुचिया दुर्बचो बाड़ई न भिन्ने सहते हृदय, मेरा हृदय ऐसा छेद हो गया है उस घड़ा की तरह जिसमें अब पानी टिक नहीं सकता। अब मेरा हृदय में आपका ज्ञान टिक नहीं पाएगा, इसलिए अब इस तरह की बात मत बतलाइए, इससे मुझ कुछ हो नहीं पाएगा। मेरे हृदय में बस सुरुचि की कटु बाण ही लगा हुआ है, मैं अब आपकी बात नहीं सुन सकता। अगर आप इसमें सहायता कर सकते हैं तो मुझे उपदेश कीजिए। आप भगवान ब्रह्मा के पुत्र हैं, संसार के कल्याण के लिए बीड़ा बजाते हुए घूम रहे हैं, अगर मेरा भी कल्याण कर सकते हैं तो मुझे ऐसा साधन बताइए कि जो मैं अपने दादा परदादा से भी उत्कृष्ट पद प्राप्त करूं। तब तो ध्रुव की बात सुनकर देवर्षि नारद एकदम पिघल गए। बेटा, तेरी माता सुनीति ने तुझे जो कुछ बताया है ना कि भगवान भक्तों की रक्षा करते हुए, एकदम 100% सही कही। इसलिए बेटा, भगवान वासुदेव उपास्य है तो उनमें चित लगाकर उनका भजन करो, अपनी माँ की बात मानो और जाओ। धर्मार्थ काम मोक्षाख्यम या इच्छे श्रेहात्मना एकमेव हरेश तत्र कारणम पादसेवनम, उनका भजन करो बेटा, वही सारे कामनाओं को पूर्ण कराने वाले हैं, उन हरि की उपासना करो। कर तत्तात गच्छ भद्रम ते जमुनायस तटम सुचि, हे बेटा तुम्हारा कल्याण हो, तुम जमुना के तट पर जाओ, ब्रज में जाओ। पुण्यम मधुबनम जत्र सानिध्यम नित्यदा हरे है, तुम मधुबन जाओ, ब्रजमंडल में जाओ, मधुबन जमुना के तट पर जहाँ भगवान श्री हरि नित्य रहते हैं। और वहाँ जा करके क्या करना है बेटा, जमुना जी में तीन बार स्नान करना, तीन बार स्नान करके और फिर स्नान करके नित्य कर्म से निवृत्त होकर आसन पर बैठ जाना, और अपने प्रणायाम के द्वारा रेचक कुंभक पूरक से प्रणायाम करके धीरे धीरे अपने चित्त वृत्ति को स्थिर करना, अपने शरीर को शुद्ध करना, इंद्रिय के दोषों को दूर करना, और परम पुरुष परम गुरु भगवान का ध्यान करना। भगवान के नेत्र और मुख प्रसन्न रहते हैं, उनको देखने से ऐसा मालूम हो रहा है कि भक्तों को कृपा करने के लिए भगवान सदा तैयार है। प्रसादाभिमुखम सस्वत प्रसन्न वदने क्षणम, भक्तों पर कृपा करके भगवान देख रहे हैं। सुनासम सुभ्रुवम चारु कपोलम सुर सुंदरम, भगवान का नाक बड़ा सुघड़ है, गाल बड़ा सुंदर है, बड़ी सुंदर उनका एक एक अंग है, और उनके रत्नारे नेत्र भक्तों पर कृपा करने के लिए देख रहे हैं, दया के समुद्र हैं, बड़े भक्तों से प्रेम करते हैं, सांवला सलोना रूप है। इस प्रकार उनके रूप को देखना बेटा। और रूप का वर्णन करते हुए फिर कहते हैं कि इस तरह प्रभु का ध्यान करना, और नक से सिर तक भगवान के रूप का वर्णन करते हैं कई श्लोकों में। फिर कहते हैं कि उन प्रभु को चिंतन करना, मन आंख बंद करके उस प्रभु को चिंतन करते हुए वहां प्राप्त पुष्प को, फल को, दुर्वा को मानसिक रूप से अर्पण करना। परम गुह्य मंत्र तुमको दे रहा हूँ, 7 रात तक जप करने से व्यक्ति सिद्ध हो जाता है और सिद्धों का दर्शन होता है। वो मंत्र है बेटा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यह मंत्र है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र से जप करना, एकाग्र होकर इसी मंत्र का जप करना, और इसे भगवान के विविध द्रव्यों से देश काल के अनुसार मानसिक रूप से पूजन करना, और फिर भगवान की द्रव्यमयी वस्तु से पूजन करना, इस तरह से उनको तुलसी अर्पण करना, भगवान की मूर्ति बना लेना। भगवान के विविध मूर्तियां होती हैं, वो मिट्टी से बालू में मूर्ति बना सकते हो, पत्थर की मूर्ति है, द्रव्य की मूर्ति बनती है, और मन से भी मानसिक रूप से जैसा संभव हो, तुमको जैसा उचित लगे वैसे भगवान की मूर्ति बना लेना। शिला आदि की मूर्ति मिल सके तो उसमें, नहीं तो पृथ्वी से मिट्टी का मूर्ति बना लेना ऐसे, और उसी पर जल दुर्वा पुष्प फल अर्पित करना, दुर्वांकुर आदि, और उनकी पूजा करना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा ऐसे करके अर्पण करना उनको। तो इस प्रकार जब भगवान का चिंतन करोगे, उपासना करोगे, तो तुम्हारी मति भगवान में लग जाएगी। इस तरह ध्रुव महाराज प्रसन्न हो गए, बहुत खुश हुए, और देवर्षि नारद के चरणों को प्रणाम किए, उनकी परिक्रमा किए और मधुबन की यात्रा कर दिए। तो मधुबन की ओर चले गए ध्रुव महाराज, आए इधर नारद जी आए उत्तानपाद के पास। महाराज उत्तानपाद बड़ा उदास दिख रहे हैं, बात क्या है, आपका मुख सुखा सुखा दिख रहा है, धर्म अर्थ काम सब ठीक ठाक चल रहा है, क्या कहूँ मैं कामी हूँ स्त्रैण हूँ, हाय हाय मैं अपने छोटे बच्चे को निर्दय होकर घर से निकाल दिया, क्या कहूँ पता नहीं कहाँ गया, कहीं थक कर गिर गया होगा भूख प्यास से, उसको भोजन नहीं मिलता होगा, कहीं वन में जाएगा तो कोई बाघ सिंह भेड़िया न खा जाए, ओहो मैं कैसे स्त्री का गुलाम हूँ, अहो मैं बत दौरात्मन मिस्त्री जीत जीत से पधार योंकम प्रेमणा रुरुक क्षमतम नाभ्य नंदम असतम, हाय हाय मेरे जैसे कुटिल को देखिए, मैं स्त्री के गुलाम हूँ, बेचारा मेरे गोद में चढ़ना चाहता था लेकिन मैं उसको कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, इससे नाराज होकर घर से निकल गया है, देवर से मैं क्या करूँ, रो रहे हैं। तो नारद जी कहते हैं राजन अपने उस बच्चे ध्रुव के लिए चिंता मत करो, उसके रक्षक भगवान है, वो तुम्हारे जस को सारे भुवन में फैलाने वाला बालक है, अभी थोड़े ही दिनों में भगवान का दर्शन करके लौटने वाला है, वह बालक इतना समर्थ बालक है कि बड़े बड़े लोकपाल जिस काम को नहीं कर सकते वो तुम्हारा छोटा सा नन्हा बालक 5 वर्ष का ध्रुव करके लौटेगा, और उसी के कारण तुम्हारा जस तीनों भुवन में फैलेगा। तो फिर इस तरह मैत्रेय मुनि आगे कहते हैं कि उत्तानपाद को उपदेश करके नारद जी तो चले गए, लेकिन अब बालक ध्रुव मधुबन में जाकर जमुना जी में 3 बार स्नान करके नारद जी के बताए हुए विधि से नारायण की उपासना प्रारंभ किया ध्रुव, और पहला महीना में कैथ और बैर के फल को खाता था 3-3 दिन में एक बार, 3 दिन में कुछ बैर और कुछ कैथ है के फल खा लेते थे, एक महीना बीता। दूसरा महीना में 6-6 दिन में सूखा घास खाकर और सूखा पत्ता जो पेड़ से अपने आप गिर गया है उसको खाकर भजन किया। फिर तीसरा महीना में 9-9 दिन पर जल पीकर वो चित को समाधि में रखा, और चौथे महीना में सांस को जीतकर 12 दिन में केवल वायु सांस लेता था, 11 दिन बंद 12वां दिन लेता था, और 5वां महीना आते आते पूरा सांस बंद करके खड़ा हो गया एक उंगली पर पृथ्वी को दबाते हुए, नमो भगवते वासुदेवाय सांस को जीत करके लगा जप करना। राजकुमार ध्रुव एक पैर से खड़ा हो गया, उसके अंगूठे से दब कर पृथ्वी मानो झुक गई, और गजराज जैसे किसी नाव पर चढ़ गया हो नाव डगमगाने लगे वैसे पृथ्वी ध्रुव के तेज से कांपने लगी, और इस प्रकार समस्त विश्व के अधिष्ठान भगवान समष्टि का ध्यान करने लगा। जब अपने श्वास प्रश्वास को रोकने का प्रयास किया और भगवान को चित्त में एकाग्र भाव से चिंतन किया तो धीरे धीरे सांस जब बंद किया समष्टि के चिंतन करते हुए तो संपूर्ण विश्व के जीवों का सांस रुकने लगा, सबका सांस बंद होने लगा, सब स्थावर जंगम सब अनुभव करने लगे हो क्या गया है, ये क्या हो गया, सब लोग लोकपाल भगवान श्री हरि के शरण में आए, देवता लोग कहने लगे प्रभु ये हो क्या रहा है हमारी रक्षा कीजिए। तो भगवान कहे डरो मत, उत्तानपाद के पुत्र का कमाल है, मैं अभी जा रहा हूँ उसको रोकने के लिए। तो भगवान 9वें अध्याय में ध्रुव के पास आते हैं और गरुड़ पर चढ़कर भगवान मधुबन में अपने भक्त को देखने के लिए आए, 9वां अध्याय में वर्णन है। और भगवान जब सामने आए ध्रुव के तो जो चीत में भगवान का जो रूप था उस रूप को ओझल कर दिए भगवान, जो स्मरण कर रहा था चित्त में वो एकदम छिप गया। अब ध्रुव छटपटाने लगा कि वो रूप क्या हो गया क्या हो गया, तब तक आंख खोला, तो आंख जब खोलता है तो जिस रूप का चिंतन भीतर कर रहा था वही रूप सामने है, और ध्रुव तो घबरा गया, नेत्र खोला तो सामने भगवान को देखा, बड़ा कौतूहल हुआ, पृथ्वी पर दंडवत प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम करके लौट गया एकदम, और लौटा उनके चरणों में और ऐसे देखने लगा मानो आंख से पी जाएगा उनको, मुख से चूम लेगा उनके रूप को, इस तरह से भुजाओं से कस लेगा, इस प्रकार अब प्रभु के सामने कैसे बोले क्या करें वो कुछ समझ ही नहीं रहा था। सतम विविक्षन्त मत द्विदम हरिः ज्ञात्वाच सर्वस्य च हृदयवस्थितः कृतांजलिम ब्रह्ममयेन कम्बुना पस्पर्श बालम कृपया कपोले। जब वह हाथ जोड़कर खड़ा हो गया कुछ समझ नहीं पा रहा था तो सर्व अंतर्जामी प्रभु की स्तुति करना चाहता था लेकिन कहां से प्रारंभ करे कैसे करे कुछ नहीं समझ रहा, तो भगवान कृपा करके अपने हाथ में लिए हुए शंख को ध्रुव के गाल में स्पर्श करा दिए, छुआ दिए। सवै तदैव प्रतिपादिताम गिरा दैवीम परिज्ञात परात्म निर्णय तम भक्ति भाव व्यग्रा असत्वरम परिश्रुतोरु श्रवसम ध्रुवच्छिति। अब तो गाल का स्पर्श होते ही ध्रुव को सारा वेद का ज्ञान, भगवान के स्वरूप को जान गया और अत्यंत भक्ति भाव से विश्व विख्यात भगवान की कीर्ति को ध्रुव बोलने लगा। अपने स्तुति से ध्रुव महाराज भगवान की महिमा बोलने लगे। 5 वर्ष का बालक बोल रहा है। योन्तः प्रविश मम वाच मीमां प्रसुप्ताम संजीवयत्य अखिल शक्ति धर स्वधाम्ना अन्यान सहस्त चरण श्रवण त्वगादीन प्राणा नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। हे प्रभु आप सर्वशक्तिमान हैं, आप मेरे अंतःकरण में प्रवेश करके मेरी सोई हुई बाणी को सजीव किए और इस प्रकार हाथ पैर कान त्वचा आदि अन्य इंद्रियों में भी चेतना देते हैं। हे अंतर्जामी प्रभु आप अगर चेतना न दे तो ये शरीर हिल नहीं सकता, घूम नहीं सकता, बोल नहीं सकता, सोच नहीं सकता, देख नहीं सकता। इन इंद्रियों के अंदर जो शक्ति है वो आपकी है, आप शक्ति दिए, आप मेरे गाल में शंख स्पर्श कराए, आप ही मेरे जीवन शक्ति हैं, आपको हम नमस्कार करते। त्वद्दत्तया वयुनये दमचष्ट विश्वम सुप्त प्रबुधैव नाथ भवत् प्रपन्नः तस्या पवर्ग शरणम तव पाद मूलम विस्मर्यते कृत विदा कथमार्थ बंधो। हे नाथ सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा जी आपका शरण लिए, आपसे ज्ञान प्राप्त करके जगत को सोकर उठे हुए पुरुष के समान देखे। हे दीन बंधो आप ब्रह्मा जी को ज्ञान देने वाले हैं, उन्हीं आपके चरण कमलों में मुक्त पुरुष आश्रय लेते हैं, कोई भी कृतज्ञ पुरुष आपको कैसे भूल सकता है। ब्रह्मा आपकी कृपा से जगत सृष्टा बने हैं, शिव आपकी कृपा से प्रलयकारी हैं, इतने बड़े बड़े देवताओं में जो वरदान देने की क्षमता है आपकी है, यही है भागवत। भागवत का अर्थ है कि हर क्षण हर पल हर क्रिया में हर समय भगवान है, यह धारणा बना रहे, इसको कहते हैं कृष्ण कॉन्शियसनेस। हर जगह भगवान का हाथ है, भगवान से शून्य कोई जगह नहीं, कोई व्यक्ति नहीं, कोई स्थान नहीं, कोई वस्तु नहीं। अगर इस बात को अगर व्यक्ति भूल गया तो कृतघ्न है, नहीं तो कोई भी कृतज्ञ आपको कैसे भूल सकता है। या निर्वृति तनुभृतम तव पाद पद्मा ध्याना भव जन कथा श्रवणे नवाशात सा ब्रह्मणी स्व महिमन्यपि नाथ मा भूत किम त्वंत काशी लुलितात पतताम विमानात। हे प्रभु हे नाथ आपके चरणों का ध्यान करने से, आपके भक्तों के पवित्र चरित्र सुनने से प्राणियों को आनंद प्राप्त होता है, वह निजानंद स्वरूप ब्रह्म में कभी नहीं मिल सकता। और हे प्रभु फिर जिन्हें काल की तलवार काट डालती है उन स्वर्गीय विमानों से गिरने वाले पुरुषों को सुख कैसे मिल सकता है। जो छीणे पूर्णे मर्तलोकम विषंति, काल का प्रवाह जो स्वर्ग के सुख से नीचे गिरा देता है, जब पूर्ण छीण हो जाता है तो स्वर्ग से गिरना पड़ता है, तो फिर वह व्यक्ति आपको कैसे जान सकता है, नहीं जान सकता। इसलिए हे प्रभु भक्ति मुहु प्रवहताम त्वयि मे प्रसंगो भूयाद अनंत महता ममलाशयानम एनांजसोल बण मुरु व्यसनम भवाब्धिम नेशे भवद गुण कथा मृत पान मत। हे प्रभु मुझे तो आपका उन विशुद्ध हृदय महात्माओं का संग चाहिए। अब मानो भगवान कहते हैं कि ध्रुव तुम प्रार्थना करे तुमको क्या चाहिए, अपने पिता से उत्कृष्ट पद, तो कहते हैं नहीं प्रभु अब मुझे आप अपने भक्तों का संग दीजिए, क्या प्राप्त करोगे, क्या सुख है वहाँ। कहते हैं अविच्छिन्न भक्ति भाव है, जहाँ उनके संग में मैं आपके गुणों और लीलाओं का कथा सुधा पीकर मस्त हो जाऊंगा। सहज ही अनेक प्रकार के दुखों को, इस भयंकर संसार सागर को मैं अपने आप पार कर जाऊंगा। भक्तिर मुहु प्रवतम तयमे प्रसंगो, आपके भक्तों का संग चाहिए जहाँ निरंतर भक्ति होती है, जहाँ भगवान का दर्शन होता है, भगवान के नाम का कीर्तन होता है, भगवान की कथाएं होती है। तो एनान जसोल बड़मुरु व्यसनम भवाब्धिम, उस कीर्तन से, उस श्रवण से, उस दर्शन से, उस भक्ति के आचरण से ये भवाब्धि का दुख अपने आप पार हो जाता है। नैसे भवद गुण कथा अमृत पान मत्त, मैं आपके गुण कथा को सुनकर मस्त रहूंगा, मुझे इस भवसागर का कोई भय नहीं है। देखिए ध्रुव महाराज, और इसी बात को प्रहलाद महाराज भी कहते हैं नृसिंह देव से कि हे नृसिंह देव, मुझे इस बैतरणी से कोई डर नहीं है। नैवे दुजे पर दुरत्य बैतरण्या, तद बीर्ज गायन महामृत मग्न चित्त, सोचे ततो विमुख चेतस इंद्रियार्थ, माया सुखाय मुद बहतो, माया सुखाय भर मुद बहतो विमूढ़। प्रहलाद महाराज कहते हैं सातवां स्कंद के नौवां अध्याय के 43 नंबर का श्लोक है, उसमें प्रहलाद महाराज कहते हैं कि हे नृसिंह देव, नैव दुजे पर दुरत्य बैतरण्या, मैं बैतरणी से उद्विग्न नहीं हूँ, नरक जाने का मुझे डर नहीं है। क्यों? तद बीर्ज गायन महामृत मग्न चित्त, मैं आपकी महिमा को गाने में इतना मस्त हूँ कि बैतरणी तो अपने आप पार कर जाऊंगा, कोई चिंता नहीं है। मुझे चिंता है उन विमुख लोगों को जो आपका भजन छोड़कर माया के सुख भोगना चाहते हैं, ये प्रहलाद महाराज कहते हैं। और इसी प्रकार की बात ध्रुव महाराज कहते हैं कि मुझे तो आप भगवत गुण कथा मृत पान मत, तो मैं आपकी कथा को गान करूंगा, भगवत गुण कथा आपकी कथा को गान करूंगा, मुझे इस व्यसन से, संसार से दुख नहीं है। ए त्वब जनाब भवदीय पदारविंद, सौगंध लुब्ध हृदय सुकृत प्रसंगा, कहते हे प्रभु, जिनका चित आपके चरण कमल की सुगंध में लुभाया हुआ है, जो आपकी कथा सुधा का पान करते हैं, उन लोगों को ये घर गृहस्थी, स्त्री पुत्र, संसार, बिजनेस, व्यापार, ये सब की सुधि नहीं रहती है, वो अपने आप छूट जाता है, उसके लिए प्रयास नहीं करना पड़ता। कथा में टेस्ट मिल गया तो ये अपने आप छूट जाएगा, एक दिक्कत नहीं है। इसलिए प्रभु बहुत सुंदर स्तुति किए हैं, 12 श्लोक अत्यंत महत्वपूर्ण है, वो तो एक सप्ताह का विषय है। अंत में कहते हैं कि हे नाथ, सत्याशिषो ही भगवान स्तव पाद पद्मम आशीष तथा अनुभजत पुरुषार्थ मूर्ते, अप्यय मर्य भगवान परिपाति दीनान वास्रे व वत्सक मनुग्रह कातरोस्मान। हे प्रभु, आप परमानंद मूर्ति हैं, जो लोग ऐसा समझकर निष्काम भाव से निरंतर आपका भजन करते हैं, उनको राज आदि भोगों की कोई अपेक्षा नहीं, केवल आपके चरण कमलों का भजन करते हैं। ऐसे लोगों के लिए, जो निष्किंचन महात्मा है, उनके लिए आपका चरण ही धन है, और जो संसार को चाहते हैं, उनके कामनाओं को भी आप तुरंत देने वाले हैं। गाय जैसे अपने तुरंत के ब्याई हुई बछड़े को दूध पिलाती है, व्याघ्र आदि से बचाती है, उसी प्रकार आप भक्तों पर कृपा करते हैं, जो आपका भजन करता है उनको सब कुछ देने वाले पुरुषार्थ के मूर्ति हैं। निरंतर आप अपने भक्तों पर कृपा करते हैं, सकाम जीवों की कामनाओं को पूरा कर दें, इसमें क्या कहना है, सब कुछ करते हैं। हमारे जैसे लोग जो सकाम कर्मी हैं, कुछ कामना चाहते हैं उनको पूरा करते हैं, उनके संसार भय से रक्षा करते हैं। जो देवता लोग कहते हैं सत्यम दिसत्य अर्थितम अर्थितो निराम, उनके कामनाओं को पूरा करते हैं, लेकिन आप अपना चरण कमल भी दे देते हैं, जो परम पुरुषार्थ। तो इस प्रकार ध्रुव महाराज भगवान के चरणों की प्रार्थना किए और भगवान बहुत प्रसन्न थे, कहे थे ध्रुव आपको क्या चाहिए, जो चाहिए वो ले लो। ध्रुव अब कुछ चाहता नहीं है, फिर भी भगवान कहते हैं कि तुम्हारा कल्याण हो, मैं तुमको ऐसा लोक दूंगा ध्रुव, जिसकी प्रदक्षिणा बड़े बड़े सप्तर्षि देवता लोग करेंगे, वो दिव्य लोक ध्रुव लोक दूंगा, लेकिन इसके पहले तुम घर जाओ अपने पिता के पास, और पिता के उत्तराधिकार को 36,000 वर्ष तक भोगोगे, और तुम्हारे इंद्रियों में शक्ति ज्यों की त्यों बनी रहेगी, 37 वर्ष साहस्रम रक्षिता व्याहतेन्द्रिय। तो इस प्रकार ध्रुव महाराज भगवान के चरणों में प्रणाम किए, फिर अपने नगर को लौटे। तो विदुर जी प्रश्न करते हैं, अन्यथा अर्थविद कहते हैं कि एक जन्म में वो परम पद को पाप प्राप्त कर लिए, लेकिन अपने को अकृतार्थ समझ रहे थे ध्रुव महाराज। ऐसा क्यों? ध्रुव महाराज को भगवान का दर्शन हो गया, वैकुंठ का पार्ट मिला, उनको अपने पिता का उत्तराधिकार मिला, लेकिन ध्रुव महाराज ऐसा महसूस कर रहे थे कि मैं कुछ नहीं प्राप्त, ठग लिया गया। तो विदुर जी पूछ रहे हैं कि ऐसा क्यों सोच रहे थे, उनके मन में इस तरह की ग्लानि क्यों हो रही थी। कहते कि ध्रुव जी के हृदय माँ के बाग बार से जब बीध हो गया था और निर्णय लिए थे कि मैं अपने पूर्वजों से भी उत्कृष्ट लोक प्राप्त करूंगा, और इसके लिए भजन करने चले थे कामना से युक्त होकर, लेकिन जब भगवान प्राप्त हो गए, भगवान भी उनको इसी प्रकार की वस्तु दे रहे हैं कि जाओ अपने पिता का उत्तराधिकार प्राप्त करो, तो इनके मन में बड़ा ग्लानी हो रहा है कि वास्तव में मैं मन ही मन सोच रहे हैं कि मैं 6 महीना में भगवान का दर्शन किया, इसके बाद भी मेरे चित्त में भोग रहा और मेरे भोग प्रवृत्ति को भगवान समझ रहे थे, इसलिए भगवान मुझे दे रहे हैं। वास्तव में मैं भगवान को क्यों नहीं मांगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए था, इन नश्वान जगत की याचना क्यों किया, मुझ मंद भागी को ये अंत होने वाला राज्य लेकर मैं क्या करूंगा पिता का उत्तराधिकार, मैं मूर्ख हूँ। वास्तव में मेरी बुद्धि को देवताओं ने हर लिया था, देवता लोग जलते हैं, अगर मेरी बुद्धि ठीक ढंग से रहता तो मैं भगवान से भगवान को मांगता, मैं जीवन को व्यर्थ में बिता दिया, इस तरह से जीवन व्यर्थ बीत रहा है। अगर भगवान प्रसन्न हो जाए और उनसे संसार की वस्तु मांगी जाए, वास्तव में बड़ा अभागा जीवन है, मैं बड़ा पुण्यहीन हूँ। कोई कंगाल किसी चक्रवर्ती सम्राट से कोई चावल की भूसी मांगे तो कितनी विडम्बना है। कहते हैं स्वराजम यक्षतो मौढ़ मानो में भिक्षितो बत ईश्वराक्षीण पुणे न फली कारा निवाधनम। सम्राट से भूसी मांगा जाए, उसी प्रकार मैं परमानंद स्वरूप भगवान से ऊंच पद की कामना किया, भगवान मेरे कामना को समझ गए। इस तरह से ध्रुव महाराज गलानी किए। उनके प्रश्नों का उत्तर देकर मैत्रेय मुनि कहते हैं कि ध्रुव महाराज जब अपने घर से चले और इसका संवाद उत्तानपाद को मिला, तो उत्तानपाद ने संवाद देने वाले व्यक्ति को बहुत बहुमूल्य हार दिए और उनके अगवानी के लिए चल दिए, खूब सुंदर हाथी को सजाकर और सब सारे सामग्रियों को सजाकर अपने पुत्र उत्तम को लेकर अपने गांव से अपने घर से ब्राह्मण लोग लेकर चले। और ध्रुव महाराज को देखकर जब महाराज उत्तानपाद हृदय से भर कर आलिंगन किए, उनके आंखों में झरझर आंसू गिरने लगा, वो सोचने लगे कि अहो मेरा बेटा साक्षात भगवान के चरणों का दर्शन ही नहीं स्पर्श करके आया है। एकदम गदगद हो गए महाराज उत्तानपाद, भले स्तैण थे लेकिन भगवान के भक्त थे महाराज उत्तानपाद। एक वैष्णव के लिस्ट में उत्तानपाद का नाम आता है, भगवान भी कहते हैं महाराज उत्तानपाद का स्मरण करने से पाप खत्म होता है। तो इस प्रकार ध्रुव महाराज का आलिंगन किए और उनके स्पर्श से जिन भगवान के पाद पद्मों के स्मरण से पाप समाप्त हो जाता है, उन भगवान के चरणों को छू कर आया है यह सोच कर किए। और माताओं को ध्रुव महाराज प्रणाम करते हैं, सुरुचि सुनीति को, सुरुचि के नेत्रों में भी अश्रु गिर रहा है, गदगद वाणी से आशीर्वाद देती है, बेटा जियो जियो जीवेती बास गदगदया गिरा, बेटा जीवित रहो जियो आशीर्वाद देती है। इस प्रकार अपने प्राण प्यारे को पाकर सुनीति का सारा संताप दूर हो गया, ओ नेत्रों में झरझर आंसू गिरने लगे, आनंद आंसू ऐसे गिर रहे थे सुनीति के नेत्रों से, उत्तानपाद के नेत्रों से जो शीतल था ठंडा था। आनंद में जो आंसू गिरता है वो शीतल होता है और दुख में गिरता है वो गर्म होता है। तो इस प्रकार अपने पुत्र को स्नान करा दी और सारी प्रजा जय हो ध्रुव, इसे ही राजा बनना चाहिए, इस तरह से प्रजा मांग करने लगी। महाराज उत्तानपाद अपने राजधानी में प्रवेश किए, सभी लोग महाराज उत्तानपाद के भाग की सराहना करते हैं, गांव भी सजाया गया है केले के फल से, सुपारी से, सुंदर पौधों से, और गांव में चंदन का छिड़काव है, तरह जगह जगह पर कलश है। सब दर्शन करते हुए ध्रुव महाराज घर में प्रवेश कर रहे हैं। जैसा देवर्षि नारद ने बताया था वैसा जस ऐश्वर्य प्राप्त करके ध्रुव लौटा है, यह देखकर सारी जनता ध्रुव को प्रसन्न कर रही है, इसलिए कम उम्र में ही महाराज उत्तानपाद ध्रुव को अपना राजसिंहासन दे दिए और स्वयं ध्रुव से विदा लेकर अपने वृद्धावस्था में आत्मचिंतन करने के लिए, भगवान के भजन करने के लिए वन में चले गए। महाराज ध्रुव को अपने पिता के उत्तराधिकार पर राजा बनाकर इनको छोड़ते हैं। फिर इनके राज्य का वर्णन और वैकुंठ की प्राप्ति की कथा कल कही जाएगी। हरे कृष्णा, जय श्री प्रभुपाद।